आगे सबक देखिए भाई, व अलहक बाज़ुहुम क़ील हुवा सीबवैहि इन्नल मक़सूरता बिहिमा ऐ बिलैता वलअल्ला फिल मनअ अन दुखूलिल फाइ अलल ख़बर वल असहु अन्नहा ला तमनउ अन्हु लिअन्नहा ला तुख़रिजुल कलाम अनिल ख़बरियति इलल इन्शाइयति युअय्यिदुहु क़ौलुहु तआला إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل. भाई गुज़श्ता सबक में हम वो मकामात पढ़ रहे थे जहां मुब्तदा मुतज़म्मिन होता है माने शर्त को, तो उसकी खबर पर फा का दाखिल करना सही है और वो इसमें मौसूल है जिसका सिला फेल या ज़र्फ़ आए. इसी तरह वो नकेरा जिसकी सिफत फेल या ज़र्फ़ आए, तो ये मुतज़म्मिन होते हैं माने शर्त को, तो इस मुब्तदा की खबर पर फा का लाना जायज है. इसी तरह ये वाला इसमें मौसूल अगर किसी इसम की सिफत बने तो उस मौसूफ का भी यही हुक्म है. और इसी तरह ये जो नकेरा है इसकी तरफ कोई इसम मुजाफ हो जाए तो उस इसम का भी यही हुक्म है, यानी ये भी मुतज़म्मिन होते हैं माने शर्त को, तो इनकी खबर पर फाका लाना जायज है भाई. उसके बाद साहिबे काफिया ने आपको बतलाया था कि लैता और लाल्ला मानेअ हैं बिल इत्तेफाक भाई, यानी वो मुब्तदा जिसकी खबर पर फाका दाखिल करना जायज था उस पर अगर लैता और लाल्ला दाखिल हो जाएंगे तो अब उसकी खबर पर फाका लाना जायज नहीं भाई. और उसकी वजह जिक्र की थी साहिब जामी ने कि यह लैता और लाल्ला कलाम को खबर की कबील से निकालकर इंशा बना देते हैं तो फिर इनकी मुशाबहत शर्त और जजा के साथ खत्म हो जाती है, इसलिए क्योंकि शर्त और जजा जो है वो इखबार की कबील से हैं और लैता और लाल्ला ने कलाम को क्या बना दिया, कलाम को इंशाई बना दिया. फिर इस पर इश्काल होता है कि जुमला शर्तिया का दारोमदार तो जजा पर है और जजा तो जुमला खबरिया भी हो सकती है और जुमला इंशाइया भी, तो मालूम हुआ जुमला शर्तिया खबरिया भी हो सकता है और इंशाइया भी, और आप तो हमें क्या बतला रहे हैं कि शर्त और जजा इखबार की कबील से हैं. तो मैंने तफसील जिक्र की थी कि शर्त और जजा किस तरह इखबार की कबील से हैं कि देखो शर्त और जजा के दरमियान रबत होता है, शर्त पाई जाए तो जजा जरूर पाई जाती है, तो शर्त हुई मुब्तदा के दर्जे में और जजा हुई खबर के दर्जे में, जैसे मुब्तदा के लिए खबर साबित होती है इसी तरह शर्त के लिए जजा साबित होती है, तो बाई लिहाज ये इखबार की कबील से है. मसलन एक जुमला खबरिया ले लें, जैदुन काइमुन, जैद खड़ा है, इसमें देखो जैद है मुब्तदा और कायमुन है उसकी खबर, तो हम कहेंगे कि इस जुमले में जैद के लिए कियाम साबित है. तो जैसे यहां जैद के लिए कियाम साबित है इसी तरह शर्त और जजा में हम कह सकते हैं कि ये जो शर्त है इसके लिए आगे आने वाली जजा साबित है. तो जैसे मुब्तदा के लिए खबर साबित होती है इसी तरह शर्त के लिए जजा साबित होती है, तो बई लिहाज ये शर्त और जजा इखबार की कबील से हैं. बात समझ में आई? आप पहले शर्त लाए और फिर जजा लाए, तो गोया आप कहना यह चाहते हैं कि ये वाली जो शर्त है इसके लिए ये आगे आने वाली जजा साबित है. मसलन खावंद अपनी बीवी से कहता है इन दखलती दारा फ अंति तालिकुन, अगर तू उस घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक है, तो ये कहना वो ये चाहता है कि इस शर्त के लिए ये वाली जजा साबित है, वो घर में जाएगी तो ये जजा आएगी यानी उसको तलाक हो जाएगी. तो बाई लिहाज शर्त और जजा इखबार की कबील से हैं भाई. फिर इस पर इश्काल हुआ था कि लैता और लाल्ला जिस तरह बिल इत्तेफाक मानेअ हैं इसी तरह अफाल नाकिसा और अफाल कुलूब जो हैं वो भी बिल इत्तेफाक मानेअ हैं, वो भी जब दाखिल हो जाए इस किस्म के इसमें मौसूल या इस किस्म के नकेरा पर तो वो भी मानेअ बनते हैं और खबर पर फाका लाना जायज नहीं. तो साहिबे काफिया ने उनको क्यों जिक्र नहीं किया? तो उसका जवाब दिया था कि साहिब काफिया तमाम उन चीजों को जिक्र नहीं करना चाहते बल्कि सिर्फ हरूफ मुशब्बा बिल फेल के अंदर जिनके अंदर इत्तेफाक है सिर्फ उनको बयान करना चाहते हैं। और हरूफ मुशब्बा बिल फेल में से तो सिर्फ लैता और लअल्ला है जिनके बारे में नहवियों का इत्तेफाक है कि ये मानेअ बनेंगे। फिर सवाल पैदा हुआ कि ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल ही को क्यों जिक्र करना चाहते हैं, उनकी तख्सीस की क्या वजह है, और चीजों को क्यों नहीं जिक्र करना चाहते। तो उसका भी जवाब दिया था कि हुरूफ मुशब्बा बिल फेल जो हैं इसके अंदर जो इख्तिलाफ है वो साहिब काफिया के नजदीक अहम है, उसको अहमियत देते हुए इसको जिक्र फरमाया, यूं कहें उसकी तरफ इनकी तवज्जो ज्यादा है, तो जो अहम था उनके नजदीक उसको जिक्र कर दिया और जो अहम नहीं था उसको जिक्र नहीं फरमाया। भाई अब आगे देखिए आज का सबक, कहते हैं व अल हका बाज़ुहुम क़ीला हुआ सीबवैही इन्नल मकसूरत बिहिमा ऐ बिलैत वलअल्ला फिल मनअ अन दुखूलिल फाई अलल खबर। आगे बतलाएंगे कि बाज नहवियों ने इन्ना को भी इन दोनों के साथ मिलाया है यानी लैता और लअल्ला के साथ, बाज नहवी हजरात ने लैता और लअल्ला के साथ इन्ना को भी मिलाया है, यानी जिस तरह लैता और लअल्ला माने हैं इस बात से कि जब ये आ जाएं तो फिर इनकी खबर पर फाका लाना जायज नहीं, इसी तरह ये जो इन्ना है ये भी जब इस किस्म के जुमले पर दाखिल होगा, इस किस्म के मुबतदा पर दाखिल होगा, तो ये भी मानेअ बनेगा और अब खबर पर फाका लाना जायज न होगा। भाई लेकिन साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि ज्यादा सही कौल ये है कि इन्ना मानेअ नहीं बनेगा। भाई बाजों ने तो इन्ना को भी लैता और लअल्ला से मिलाया है और उसे भी मानेअ करार दिया है इस फाके लाने से, लेकिन कहते हैं ज्यादा सही कौल यह है कि इन्ना मानेअ नहीं बनेगा। वजह यह कि इन्ना जो है कलाम के अंदर सिर्फ ताकीद पैदा करता है, वो कलाम को इखबार से निकालकर इंशा नहीं बनाता। भाई जबकि लैता और लअल्ला वो तो कलाम को इंशा बना देते थे भाई, तो उसकी मुशाबहत शर्त और जजा से खत्म हो जाती थी, जबकि इन्ना इन्ना के दाखिल होने के बाद भी जुमला खबरिया वो जुमला खबरिया ही रहता है, तो उसकी जो मुशाबहत है शर्त और जजा के साथ वो अभी भी मौजूद है, लिहाजा फाका लाना जायज है। भाई देखिए भाई किताब पर कहते हैं वह अल हका बाज़ुहुम और मिलाया है बाज नहवियों ने क़ीला हुआ सीबवै ही, कहा गया है कि वो इमाम सीबवै हैं, ये जो कॉल करने वाले हैं वो कौन हैं, इमाम सीबवै हैं। देखो इस कौल की निस्बत किसकी तरफ की गई है, इमाम सीबवै। वह अल हका बाज़ुहुम और मिलाया है बाजों ने इन्ना मकसूरा को भी इन दोनों के साथ, यानी इन्ना मकसूरा भी मानेअ बनेगा दुखूल फा से, और दरमियान में साहिब जामी ने आपको बतला दिया क़ीला हुआ सीबवै ही, कहा गया है कि वह इमाम सीबवै हैं, उन्होंने इन्ना को लैता और लअल्ला के साथ मिलाया है दुखूल फा से मानेअ होने में। और देखो कीला के साथ जिक्र किया इसको, कीला हुआ सीबवै ही, मालूम हुआ यह कोई कतई बात नहीं है कि इमाम सीबवै ने ऐसा कहा है। हां उनकी तरफ इस कौल की बाजों ने निस्बत की है कि यह उनका कौल है, खुद इमाम सीबवै ने अपनी किताब में इसकी कोई तसरीह नहीं की भाई, इसलिए इसको कीला के साथ जिक्र किया कि कीला हुआ सीबवै ही, कहा गया है कि वह कायल कौन है, इमाम सीबवै हैं। भाई तो बाज नहवियों ने मिलाया है किस चीज को, इन नल मकसूरा तबिहिमा, वो इन्ना जो मकसूरा है यानी जिसका हमजा मकसूर है, बिहिमा इसको मिलाया है उन दोनों के साथ। भाई बिहिमा में हुमा की जमीर किसको राजे, साहिब जामी आगे बतला रहे हैं ऐ बिलैता व लअल्ला, लैता और लअल्ला के साथ मिलाया है किस चीज में, फिल मनअ अन दुखूलिल फाई अलल खबर, खबर पर फा के दाखिल होने से मना करने में, किस चीज में, फिल मनअ अन दुखूलिल फाई अलल खबर, तर्जमा आखिर से होगा खबर पर फा के दाखिल होने से मना करने में, खबर पर फा के दाखिल होने से मना करने में लैता और लअल्ला के साथ इन्ना को मिलाया है। भाई वल असहु अन्नहा ला तमनउ अनहु, और ज्यादा सही कौल यह है कि अन्नहा ला तमनउ अनहु, कि जो इन्ना है यह मना नहीं करता, अनहु उस दुखूल फा से, यह खबर पर फा के दुखूल से मना नहीं करता, यह उसके लिए मान्या नहीं है। कहा ज्यादा सही कौल यह है, मालूम वो भी सही कौल है लेकिन यह ज्यादा सही है भाई, मालूम उसको भी गलत नहीं करार दिया भाई। तो कहते हैं वल असह अन्नहा ला तमनउ अन्हु, और ज्यादा सही यह है कि ये जो इन्ना है ये मना नहीं करता, अन हु ऐ अन दुखूल फाइ दुखूल फा से, लिअन नहा ला तुखरिजुल कलाम अनिल खबरियति इलल इंशाइया, इसलिए क्योंकि ये जो इन्ना है ये कलाम को निकालता नहीं खबर होने से इंशा होने की तरफ, खबर होने से इंशा होने की तरफ ये कलाम को नहीं निकालता। युअय्यिदुहु कौलुहु तआला, और इसकी ताइद करता है अल्लाह ताला का ये कौल। अय्यद युअय्यिदु ताइद का माना है कुव्वत देना, कुव्वत देना, तो अल्लाह ताला का ये कौल इस बात को कुव्वत देता है, इस बात की ताइद करता है। कौन सी बात की? कि इन्ना के आने के बाद भी फा का दाखिल होना मना नहीं है। देखिए भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना लदीन कफरू व मातू व हुम कुफारुन फलन युकबल, यकीनन वो लोग जो जिन्होंने कुफर किया व मातू और वो मर गए, व हुम कुफारुन इस हाल में कि वो कुफार थे वो काफिर थे, फलन युकबल तो हरगिज उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, तो हरगिज उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, वो जमीन भर सोना भी दे दें अपनी जान छुड़ाने के लिए तो वो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो देखो इस आयत के अंदर इन्ना दाखिल हो रहा है, अल्लज़ीन इसमें मौसूल पर, और ये इसमें मौसूल ऐसा है जिसका सिला कफरू फेल आ रहा है, और वो इसमें मौसूल जिसका सिला फेल आए वो मुतज़म्मिन होता है मानाए शर्त को, और उसकी खबर पर फा का लाना जायज है। चुनांचे यहां भी क्या आया फलाई युकबला, देखो फा लाई गई भाई, हालांकि इन्ना दाखिल हुआ, अगर इन्ना मान्य होता फिर तो फा दाखिल ना होती यहां पर, बात समझ में आ गई। तो देखो यहां कफरू यह है सिला अल्लज़ीना का, व मातू इसका आतफ इसी सिला पर है भाई, और मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलैह का, यानी यह भी सिला ही है। वह हुम कुफारुन यह हाल है माकबल से भाई, व मातू के अंदर जो वो जमीर है जमा की यह उससे हाल है भाई, और आगे फलन युकबला ये इन्ना की खबर है। दलील समझ में आ गई कि इन्ना दाखिल हुआ लेकिन फिर भी फा लाई गई, मालूम हुआ इन्ना मानिया नहीं है भाई। फइन क़ील क़द अलहक़ा बाज़ुहुम अन्नल मफ़तूहता, यहां से एक एतराज और उसका जवाब जिक्र करेंगे। एतराज ये कि बाज नहवियों ने इन्ना को लैता और लअल्ला के साथ मिलाया, ये तो साहिब काफिया ने जिक्र कर दिया, लेकिन बाज नहवियों ने तो अन्ना जो है हमजा मफ्तूहा के साथ जो है उसको भी और इसी तरह लाकिन्ना को भी मिलाया है लैता और लअल्ला के साथ, कि अन्ना भी मान्या है लाकिन्ना भी मान्या है, लेकिन साहिब काफिया ने इन्ना को तो जिक्र किया मतन के अंदर लेकिन अन्ना और लाकिन्ना को जिक्र नहीं फरमाया। इसकी क्या वजह है? या तो जिक्र करते सबको जिक्र करते, और अगर न करते तो किसी को भी जिक्र न करते। तो उसका जवाब बाज उलमा ने दिया कि चूंकि ये इन्ना के बारे में जो कायल हैं वो इमाम सीबवे हैं, उन्होंने इन्ना को मिलाया है लैता और लअल्ला के साथ, तो इमाम सीबवे उनकी बात तो इल्म नहव में पहाड़ की तरह मजबूत होती है, तो उनकी बात को तो अहमियत दी लिहाजा उसको जिक्र फरमाया, जबकि अन्ना और लाकिन्ना को और नहवियों ने लैता और लअल्ला से मिलाया था तो उनके कौल का कोई एतबार नहीं किया, उनको कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए उनको जिक्र नहीं फरमाया। तो कहते हैं फइन क़ीला, अगर यह कहा जाए कद अल हका बाज़ुहुम अन्नल मफ़्तूहता वलाकिन्ना बिलैता वलअल्ला के, तहकीक मिलाया है बाज नहवियों ने अन्ना मफ़्तूहा को और लाकिन्ना को लैता और लअल्ला के साथ, फमा वजह तख़सीस इन्नल मकसूरति बिल इल्हाक, तो क्या वजह है कि इन्ना मकसूरा जो है उसके इल्हाक की तख़सीस की गई। फमा वजह तख़सीस इन्नल मकसूरति बिल इल्हाक, तो इन्ना मकसूरा के इल्हाक की तख़सीस की वजह क्या है? सिर्फ यह जिक्र फरमाया कद अल्हाका बाज़ुहुम इन्ना, सिर्फ इन्ना के इल्हाक को जिक्र किया, तो यह इन्ना के इल्हाक की तख़सीस की वजह क्या है भाई? तो कीला तो कहा गया है, अब जवाब देने लगे हैं, कीला कहा गया है बाज़ुहुम अल्लज़ी अल्हाका इन्ना बिहिमा, के बाज़ुहुम वो बाज़ वो जो मतन में आया था अलहका बाज़हुम, ये बाज़ ये मुराद हैं कि वो बाज़ अल्लज़ी अलहका इन्ना बिहिमा, जिन्होंने इन्ना को मिलाया है लैता और लाअल्ला के साथ, वो बाज़ जो हैं हुआ सीबवै, वो इमाम सीबवै हैं, फातद्दा बिकौलिही, लिहाजा उनके कौल का तो एतबार किया, उसको तो शुमार किया, वज़ाकराहू और उसको जिक्र फरमाया साहिब काफिया ने, वलम यातद्दा बिकौली मन सिवाहू, और एतबार नहीं किया उनके अलावा के कौल का, और नहवियों के कौल का एतबार नहीं किया, फलम यज़कुरहू, लिहाजा उसको जिक्र नहीं फरमाया, मा अन्न किलल कौलैन ला युसाइदुहुम अल-कुरआन व कलामुल फुसहाई, बावजूद इसके कि दोनों कौल जो हैं, चाहे इमाम सीबवै का कौल है इन्ना के बारे में, चाहे बाज दीगर नहवियों का कौल है अन्ना और लाकिन्ना के बारे में, ये दोनों कौल जो हैं ला युसाइदुहुम अल-कुरआन, कुरान इनकी मदद नहीं करता, सादा युसाइदु के माने मदद करना यानी ताइद करना, कुरान उनकी ताइद नहीं करता, व कलामुल फुसहा, और अरब के फसीह लोगों का जो कलाम है वो भी उसकी ताइद नहीं करता। तो कहते हैं मा अन्न किलल कौलैन ला युसाइदुहुम अल-कुरआन व कलामुल फुसहाई, साथ ही इसके कि दोनों कौल जो हैं उनकी ताइद कुरान और फुसहा का कलाम नहीं करता, फमा यदुल्लु अला अदमी मनई इन्नल मकसूरती अन दुखूल इल्फाई अलल खबरी मा सबका, यह तर्जमा समझने भाई, यह तर्जमा जरा मुश्किल है, फमा यदुल्लु बस वो चीज जो दलालत करती है अला अदमी मनई इन्नल मकसूरती अन दुखूल इल्फाई अलल खबर मा सबका, तर्जमा बाखिर से होगा, फमा या दुल्लू का तर्जमा करेंगे और फिर अलखबर से पीछे की तरफ तर्जमा करेंगे, बस वो चीज जो दलालत करती है किस बात पर कि खबर जो है उस पर फा के दाखिल होने से इन्ना मकसूरा जो है वो मना नहीं करता, वो चीज जो इस बात पर दलालत करती है कि खबर पर फा के दाखिल होने से इन्ना मकसूरा मानेअ नहीं है, इस पर जो बात दलालत करती है मा सबका, ये खबर आ गई, वो जो माकबल में गुजर गया, वो जो माकबल में गुजर गया वो इस बात पर दलालत करती है कि ये जो इन्ना मकसूरा है ये मानेअ नहीं है खबर पर फा के दाखिल होने से, वो क्या बात गुजरी पीछे, वो जो अल्लाह ताला का कौल गुजरा इन्नल्लदीन कफरू बई। तो कहते हैं फमा यदुल्लु अला अदमी मनई इन्नल मकसूरति अन दुखूल इल्फाई अलल खबरी मा सबका, पस वो चीज जो दलालत करती है अला अदमी मनई इस बात पर कि मानेअ नहीं है इन्नल मकसूरति इन्ना मकसूरा जो है वो मानेअ नहीं है अन दुखूल इल्फाई अलल खबरी खबर पर फा के दाखिल होने से, वो चीज मा सबका वो है जो मा कबल में गुजर गई, वमा यदुल्लु अला आदमी मनई अन्नल मफ्तूहति वलाकिन अन दुखूल इल्फाई कौलुहु ताला, और वो चीज जो दलालत करती है किस बात पर अला आदमी मनई इस बात पर कि मानेअ नहीं है, क्या चीज मानेअ नहीं है, अन्नल मफ्तूहति अन्नाए मफ्तूहा मानेअ नहीं है, वलाकिन्ना और लाकिन्ना मानेअ नहीं है अन दुखूल इल्फाई फा के दाखिल होने से, तो वो चीज जो इस बात पर दलालत करती है कि ये दोनों मानेअ नहीं है कौलुहु ताला, वल्लाह ताला का ये कौल है वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसह। तर्जमा समझ में आया, फिर देखें वमा यदुल्लु अला अदमी मनई अन्नल मफ्तूहति वलाकिन्ना अन दुखूल इल्फाई, और वो चीज जो इस बात पर दलालत करती है कि अन्ना मफ्तूहा और लाकिन्ना ये मानेअ नहीं है दुखूल फा से, कौलुहु ताला वल्लाह ताला का ये कौल है वालमु और तुम लोग जान लो अन्नमा गनिमतुम, अन्ना हर्फ अस हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है और ये मा मौसूला है, और गनिमतुम मिन शैइन ये उसका सिला है, तवज्जो है, तो और तुम जान लो अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन के जो चीज तुम्हें गनीमत में हासिल हो फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु तो अल्लाह के लिए उसका पांचवां हिस्सा है, फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए उसका पांचवां हिस्सा है। अब देखो इसके अंदर अन्ना आया भाई, और अन्ना मां मौसूला पर दाखिल है और यह मां मौसूला इसका सिला गनीम तुम फेल आ रहा है और वह इसमें मौसूल जिसका सिला फेल आए वह मुतजमिन होता है माने शर्त को और उस पर फाका लाना जायज है और यहां पर इस पर अन्ना दाखिल हुआ फिर भी आगे फा अन्ना लिल्लाह खुमसहू फा लाई गई। मालूम हुआ अन्ना जो है यह मानेअ नहीं है दुखूल फा से भाई। वकौल शायरी, अब यह कलाम फुसहा भी पेश कर रहे हैं भाई, कुरान से भी जिक्र कर दिया और इसके अंदर अन्ना का जिक्र था, अब एक फसीह शायर का कौल जिक्र करेंगे जिसके अंदर वलाकिन्ना जिक्र होगा और वह मानेअ नहीं बनेगा दुखूल फा से भाई। वकौल शायरी, और शायर का कौल है फवल्लाहि मा फारक्तुकुम कालियल लकुम वलाकिन्नमा युक्ज़ा फसौफ यकूनु, फवल्लाहि पस अल्लाह की कसम मा फारक्तुकुम मैं तुम लोगों से जुदा नहीं हुआ, कालियन लकुम ये हाल है भाई, हाल है भाई, फारक्तु की ता जमीर से मुतकल्लिम की जमीर से, कला यकली कलियन का माना है नफरत करना, फवल्लाहि मा फारक्तुकुम कालियन लकुम पस अल्लाह की कसम मैं तुम लोगों से जुदा नहीं हुआ, कालियन लकुम तुमसे नफरत करते हुए, वल्लाह मैं तुम लोगों से नफरत करते हुए तुमसे जुदा नहीं हुआ, वलाकिन नमा युक्जा लेकिन जो फैसला कर दिया जाता है फसौफ यकूनु तो अनकरीब वैसा ही होता है, तो अनकरीब वैसा ही होता है। कहना यह चाहता है कोई शायर होगा अपने कबीले से अपने रिश्तेदारों से कहीं दूर उसको जाना पड़ गया भाई, तो अब वो शेर में उनको पैगाम दे रहा है कि मैं तुमसे जुदा हो गया हूं दूर अब आ गया हूं, तो ये ना समझना कि मैं तुम लोगों से नफरत करते हुए दूर हुआ हूं, बस अल्लाह जो फैसला फरमा देते हैं वैसा ही होता है, यानी बालफाजी दीगर वो ये कह रहा है कि मुझे तकदीर यहां ले आई अगरचे मैं तुम लोगों से जुदा नहीं होना चाहता था भाई। तो देखो इसके अंदर देखो वलाकिन्ना आया और किस पर दाखिल है मां, मां मौसूला है और युक्जा उसका सिला है और वो मां मौसूला जिसका सिला क्या आए फेल आए वो मुतजमिन होता है माने शर्त को तो उसकी खबर पर फा दाखिल करना जायज। तो यहां देखो फसौफा फा दाखिल हो रही है अगरचे इस मां मौसूला पर लाकिन्ना दाखिल हुआ है और फिर भी लाकिन्ना मानेअ नहीं बन रहा, मालूम हुआ लाकिन्ना मानेअ नहीं है भाई। आगे देखिए भाई वकद युहज़फुल मुब्तदा लिक़याम क़रीनतिन लफ़्ज़ियतिन अव अक़लियतिन जवाज़न ऐ हस्फ़न जाइज़न ला वाजिबन। अब कुछ वो मकामात जिक्र फरमाएंगे जहां मुब्तदा और खबर को हज़फ़ किया जाता है भाई, और आपको बतलाएंगे कि ये हज़फ़ कभी जवाज़न होता है और कभी वजूबन भाई। मुब्तदा के अंदर तो सिर्फ जवाजन हजफ को जिक्र फरमाएंगे यानी जहां हजफ जायज है, जहां हजफ वाजिब है उसको जिक्र नहीं फरमाएंगे, जबकि खबर के अंदर दोनों जिक्र फरमाएंगे, जहां हजफ जायज है उसे भी जिक्र फरमाएंगे और जहां हजफ वाजिब है उसे भी जिक्र फरमाएंगे। तो सवाल पैदा होता है कि मुब्तदा के अंदर जहां हजफ वाजिब है उसको क्यों जिक्र नहीं फरमाया, तो वजह इसकी ये कि जहां मुब्तदा का हजफ वाजिब है वो निहायत कलील है, वो कलील है और नादिर है, और अन्नादिरु कल मादूम, और नादिर जो है वो मादूम की तरह होता है उसको शुमार ही नहीं किया जाता, इसलिए उसको जिक्र नहीं फरमाया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकद युहज़फुल मुब्तदा लिक़याम क़रीनतिन और कभी कभार मुब्तदा को हजफ कर लिया जाता है लिक़याम क़रीनतिन, ये लाम बमाने वक्त के है ऐ वक्त क़याम क़रीनतिन यानी जिस वक्त करीना कायम हो। याद रखो हजफ जब भी किया जाएगा उसमें करीने का होना जरूरी है भाई। करीना किसे कहते हैं, हुआ अम्र युशीरु इलल मतलूब, वो चीज जो मतलूब की तरफ इशारा कर दे उसको क्या कहते हैं, करीना कहते हैं। तवज्जो है क्या तारीफ की, हुआ अम्र युशीरु इलल मतलूब, वो चीज जो मतलूब की तरफ इशारा कर दे। क्या माना मतलूब, यानी मुतकल्लिम का जो मतलूब है जो मकसूद है उसकी तरफ इशारा कर दे। मैं आपके सामने एक कलाम करता हूं तो देखो मेरे दिल में एक माना है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो किसकी मदद लेता हूं, अल्फाज की मदद लेता हूं। तवज्जो है, मुतकल्लिम एक बात करता है, वो दरअसल अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता है अल्फाज के जरिए। तो वो जो अल्फाज हैं, कभी लफ्ज का हकीकी माना मुराद होगा, कभी मजाजी माना मुराद होगा, कभी एक लफ्ज इबारत में जिक्र होगा, कभी हजफ होगा। अब एक लफ्ज बोलता है, उससे उसका हकीकी माना मुराद है या उसका मजाजी माना मुराद है, तो उसके लिए कोई चीज चाहिए जो सुनने वाले को भी बतला दे कि इससे ये वाला माना मुराद है। इसी तरह एक लफ्ज को वह हजफ कर देता है, अब एक लफ्ज को इसने हजफ कर दिया तो मुखातब को बात पूरी समझ में नहीं आएगी, लिहाजा कोई एक चीज होनी चाहिए जो मुखातब को भी बतला दे कि यह वाला लफ्ज यहां पर हजफ किया गया है। तो इसको करीना कहते हैं। करीना किसे कहते हैं? वो चीज जो मतलूब और मकसूद की तरफ इशारा कर दे। और मतलूब और मकसूद से क्या मुराद है? वो जो मुतकल्लिम का मतलूब है, वो जो बात करने वाले का मकसद है, उस मकसद की तरफ क्या कर दे? इशारा कर दे। मसलन देखो लफ्ज शेर, भाई शेर असल में वजा है जंगली दरिंदे के लिए, लेकिन शेर का लफ्ज बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, बहादुर आदमी के लिए भी। तो अब मैं लफ्ज शेर बोलूंगा तो कोई करीना चाहिए जिससे सुनने वाले को पता चले कि इसे जंगली दरिंदा मुराद है या बहादुर आदमी मुराद है। तो जो चीज भी इस मकसद की तरफ, इस मकसूद और मतलूब की तरफ इशारा कर दे, उसको क्या कहेंगे? करीना कहेंगे। और आप यह भी पढ़ चुके हैं कि करीना हमेशा ला बिल वजा होता है, उसमें वजा नहीं, एक चीज को दूसरी चीज के लिए मुकर्रर किया गया हो उसको करीना नहीं कहते भाई। तो शेर का हकीकी माना क्या? जंगली दरिंदा। और मजाजी माना क्या? बहादुर आदमी। अब मैं आपके सामने देखें लफ्ज बोलता हूं, आपने मुझे बताना है कि यह हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है या मजाजी माना में। शेर, आप मुझे बताइए यह हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है या मजाजी माना में। तो आप कहें भाई, आप कहें भाई कि यह हकीकत और मजाज ये इस्तेमाल के एतबार से किस्में हैं लफ्ज की। आपने सिर्फ लफ्ज शेर कहा, भाई इसको किसी जुमले में तो इस्तेमाल करें, फिर हमें पता चलेगा कि यह हकीकत है या मजाज। जब तक इस्तेमाल नहीं होगा किसी जुमले और कलाम के अंदर, यह हकीकत है या मजाज, यह फैसला नहीं किया जा सकता। हां, अब देखो मैं आपके सामने कहता हूं कि कल मैंने जंगल में एक शेर देखा। अब आपको पता चल गया कि इस शेर का कौन सा माना है? हकीकी माना, यानी जंगली दरिंदा मुराद है। और किस तरह पता चला आपको? कोई करीना चाहिए जिससे पता चले। किस चीज से पता चला? करीना के वो जो मैंने जंगल को साथ जिक्र किया, जंगल के अंदर तो वो जंगली दरिंदा ही होगा भाई। तो ये करीना इसने इस माना की तरफ इशारा कर दिया। देखो मैंने कहा मैंने कल जंगल में एक शेर देखा। अब इस शेर से मेरी मुराद क्या है, मेरा मकसूद क्या है, वो जो मतलूब है उसकी तरफ किसने इशारा किया? ये जो जंगल का लफ्ज साथ मैंने जिक्र किया, तो ये जो जंगल का लफ्ज है ये करीना है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लफ्ज शेर से जंगली दरिंदा मुराद है, बहादुर आदमी मुराद नहीं है भाई। और मुझे बताइए क्या जंगल का लफ्ज इसी के लिए वजह किया गया है कि ये हमें यह बताया करे कि ये शेर का लफ्ज जंगली दरिंदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। देखा, तो ये जो करीना होता है इसमें वजा नहीं होती भाई। कोई भी चीज आपको बतला दे उसको करीना कहते हैं भाई। दूसरी मिसाल भाई, मैं आपसे कहता हूं कल मैं चिड़ियाघर गया था, वहां मैंने शेर देखा। अब शेर का क्या माना? अभी भी जंगली दरिंदा उसका माना है क्योंकि करीना मौजूद है। कौन सा करीना? ये जो मैं चिड़ियाघर का लफ्ज जिक्र कर रहा हूं कि मैं चिड़ियाघर गया था। एक और मिसाल मैं जिक्र करता हूं, कल मैंने एक शेर को तीर चलाते हुए देखा। जी, यहां शेर से क्या माना मुराद है? मजाजी माना। देखो जुमला मैंने बोला है और मेरी यकीनन इस शेर के लफ्ज से या तो शेर मुराद होगा या बहादुर आदमी, और वो आपको किससे पता चला? करीने से। कौन सा करीना? तीर चलाना। ये जो तीर चलाना, ये लफ्ज जो है ये बता रहे हैं, तो ये करीना लफ्ज यह है। इन लफ्जों ने बताया कि शेर से बहादुर आदमी मुराद है, जंगली दरिंदा मुराद नहीं, क्योंकि बहादुर आदमी तीर चला सकता है, जंगली दरिंदा तो तीर नहीं चला सकता। तो ये करीना लफ्जिया है। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां करीना लफ्ज है। क्या है? करीना लफ्ज है। तो याद रखो करीना कभी लफ्जिया होता है और कभी करीना अकलिया होता है। तवज्जो है। अगर लफ्ज से आपको पता चले एक माना का, तो फिर उसको करीना लफ्जिया कहेंगे। अगर लफ्ज के अलावा कोई भी चीज आपको बतलाए उसको क्या कहते हैं, करीना अकलिया। मालूम हुआ करीना दो ही किस्म का होता है, या करीना लफ्ज होता है या गैर लफ्ज। लफ्ज हो तो वह करीना लफ्जिया, गैर लफ्ज हो तो उसका नाम करीना अकलिया। भाई तलबा अमूमन परेशान होते हैं, बाज उलमा करीना लफ्जिया के साथ मानविया जिक्र कर देते हैं, बाज लफ्जिया के साथ हालिया जिक्र कर देते हैं, और बाज लफ्जिया के साथ अकलिया जिक्र कर देते हैं। तो तालिब इलम परेशान होता है कि पता नहीं शायद ये अलग अलग किस्में हैं करीने की। नहीं भाई, करीना दो ही किस्म पर है। मुतकल्लिम की जो मुराद है, उसका जो मतलूब है, जो उसका मकसूद है, उसका पता या तो लफ्जों से ही चल जाएगा या कोई और चीज बतला देगी। तो अगर वो लफ्जों से पता चले तो वो करीना लफ्जिया है, लफ्जों के अलावा किसी भी चीज से पता चल जाए तो उसको क्या कहेंगे, करीना अकलिया। तो याद रखना करीने की दो ही किस्में हैं, एक लफ्जिया और एक गैर लफ्जिया। या करीना वो लफ्ज होगा या गैर लफ्ज होगा भाई, और गैर लफ्ज ही का नाम करीना अकलिया है भाई। तो करीना दो ही किस्म पर है, या लफ्जिया होगा या अकलिया होगा। हां, इसी अकलिया को कभी कभार हालिया या मानविया भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बाज औकात किसी जगह पर अगर करीना लफ्ज नहीं है, लफ्ज के अलावा कोई चीज है, वो गैर लफ्ज जो है अगर वो हालत है तो उस करीने को करीना हालिया कह दिया जाता है। ये वही करीना अकलिया है, लेकिन चूंकि यहां वो हालत बतला रही है लिहाजा उसका नाम क्या रख दिया, करीना हालिया। हालांकि ये वही चीज है, करीना अकलिया कहो या करीना हालिया कहो वही चीज है, लेकिन चूंकि यहां जो चीज बताने वाली है वो हालत है लिहाजा उसको क्या कह देते हैं, करीना हालिया कह देते हैं। ये है, ये भी वही करीना अकलिया। बात समझ में आ गई? मसलन मसलन हम मस्जिद में बैठे हैं और एक शख्स मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, मैंने कहा शेर आ गया। अब मुझे बताइए यहां शेर का क्या माना, बहादुर आदमी, मजाजी माना मुराद है। तो देखो आप फौरन समझ गए कि यहां शेर बोलकर क्या मुराद है, बहादुर आदमी मुराद है। यहां लफ्जों ने नहीं बताया, देखो लफ्ज तो मैंने क्या कहे, शेर आ गया। ये लफ्ज आपको नहीं बता रहे कि इससे कौन सा माना मुराद है, इसे तो हकीकी माना भी मुराद हो सकता है और मजाजी माना भी, लेकिन इस वक्त शेर तो दाखिल नहीं हुआ, एक आदमी अंदर दाखिल हुआ है, तो यह हालत बतला रही है कि यहां शेर बोलकर क्या मुराद है, मजाजी माना यानी बहादुर आदमी मुराद है। तो किस चीज ने आपको बतलाया, अकल ने, तो यह करीना अकलिया ही है। लेकिन किस तरह अकल ने बताया, ये जो हालत है इस हालत की वजह से अकल ने आपको बतलाया कि इस वक्त तो कोई जंगली दरिंदा नहीं अंदर दाखिल हुआ, बल्कि क्या दाखिल हुआ है, इंसान दाखिल हुआ है। तो यहां बतलाया तो अकल ने ही, लेकिन इस हालत से पता चला अकल को, तो ये करीना अकलिया ही है, लेकिन इसी को क्या कह देते हैं, करीना हालिया कह देते हैं। और बाज औकात माना हमें बताता है तो उसी करीना अकलिया को करीना मानविया कह देते हैं। मसलन अकललकुम मसरा यहया, अकललकुम मसरा यहया। अब देखो कुम मसरा अमरूद या नाशपाती को कहते हैं, और यहां पर कुम मसरा इसमें भी एराब एराब लफ्जी मुंतफी है, यहां भी एराब तकदीरी और यहया के अंदर भी एराब तकदीरी है, लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा है कि अकला का फाइल कौन है, यहया फाइल है और कुम मसरा मफूल है। किसने बताया, आपकी अकल ने आपको बतलाया भाई, इसलिए क्योंकि यहया तो अमरूद को खा सकता है लेकिन अमरूद तो यहया को नहीं खा सकता। तो यह करीना आपको बतला रहा है कि कुम मसरा मफूल है और यहया फाइल है भाई, तो यह भी करीना अकलिया है। लफ्जों से नहीं पता चला, लफ्जों के अंदर तो दोनों इसमें मकसूर हैं, दोनों पर एराब लफ्जी मुंतफी है, तो मालूम हुआ यहां करीना गैर लफ्ज है। और किसने बताया, अकल ने बताया, तो यह क्या है, करीना अकलिया है। लेकिन चूंकि यहां माना से पता चल रहा है, किससे, माना से पता चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया यहया तो अमरूद को खा सकता है लेकिन अमरूद तो यहया को नहीं खा सकता, तो इसी करीने अकलिया को फिर करीने मानविया कह देते हैं। क्या कह देते हैं, करीना मानविया कह देते हैं। तो बस इतना याद रखना, करीना दो ही किस्म पर है, कभी करीना लफ्जिया होगा कभी गैर लफ्जिया होगा, और उस गैर लफ्जिया का नाम अकलिया है, और इसी अकलिया को कभी क्या कह देते हैं, हालिया, अगर वो हालत से अकल को पता चला है, और इसी करीना अकलिया को कभी मानविया कह देते हैं अगर वो माना से अकल ने आपको बतलाया है। बात समझ में आ गई। तो ये देखो एक कीमती फायदा आपको हासिल हो गया कि ये हकीकत और मजाज का पता किससे चलता है, इस्तेमाल से। किससे? इस्तेमाल से पता चलेगा कि ये हकीकत है या मजाज। और जो चीज इस पर दलालत करे उसको क्या कहेंगे? करीना। और वो करीना लफ्जिया भी हो सकता है और अकलिया भी हो सकता है भाई। तो याद रखना, जब भी मुब्तदा या खबर वगैरह किसी लफ्ज को हजफ किया जाएगा तो हमेशा उसके लिए कोई करीना चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मुखातब को भी पता चले कि मैंने यहां कौन सा लफ्ज हजफ किया है। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा तो उसको तो कलाम का माना समझ में नहीं आएगा। वो जो मुतकल्लिम का मतलूब था, मकसूद था, जो बात वो उसको बतलाना चाहता था, वो बात उसको पूरी समझ में ही नहीं आएगी भाई। तो करीना किसे कहते हैं? हुआ अमरुन युशीरु इलल मतलूब। मतलूब से क्या मुराद है? किसका मतलूब? मुतकल्लिम का जो मतलूब है, जो उसका मकसूद है, वो जो बात करना चाहता है उस मतलूब की तरफ जो चीज इशारा करे उसे करीना कहते हैं। तो कहते हैं वक़द युहज़फुल मुब्तदा लिक़याम क़रीनतिन, और कभी कभार मुब्तदा को हज़फ कर लिया जाता है लिक़याम क़रीनतिन अय वक़्त क़याम क़रीनतिन। यह लाम बमाने वक्त के कलाम अरब में आम इस्तेमाल होता है। तो यहां लाम का क्या माना करेंगे? वक्त भाई। ये लाम को इल्लत के लिए न बनाना, ये तर्जमा न करना वक़द युहज़फुल मुब्तदा के कभी कभार मुब्तदा को हजफ कर लिया जाता है लिक़याम क़रीनतिन, करीना कायम होने की वजह से। करीना कायम होने की वजह से मुब्तदा को हजफ कर लिया जाता है। इससे तो मालूम यूं हो रहा है जैसे ये करीना बाइस बन गया उसको हजफ करने का, हालांकि करीना बाइस नहीं बनता हजफ का, बल्कि करीना सिर्फ उस पर क्या करता है? दलालत करता है। तो कहते हैं वक़द युहज़फुल मुब्तदा लिक़याम क़रीनतिन लफ़्ज़ियतिन अव अक़लियतिन, और कभी कभार मुब्तदा को हजफ कर लिया जाता है करीना कायम होते वक्त लफ़्ज़ियतिन अव अक़लियतिन। देखो ये करीने की किस्में बतला दी कि वो करीना लफ़्ज़िया होगा या करीना अक़लिया। तो करीना लफ़्ज़िया या अक़लिया कायम होते वक्त मुब्तदा को हजफ कर लिया जाता है जवाजन अय हज़फन जाइज़न ला वाजिबन। भाई मतन में आया जवाजन, आगे साहिब जामी फरमा रहे अय हज़फन जाइज़न, क्या बतलाना चाहते हैं जी? बतलाना यह चाहते हैं कि यह जवाजन मफ़ऊल मुतलक है बएतबार मौसूफ महजूफ के, यह मनसूब है और मफ़ऊल मुतलक है। और मफ़ऊल मुतलक तो किसे कहते हैं? वो मस्दर जो माकबल फेल के माना में हो। और जवाजन, जवाज का तो पीछे कोई फेल जिक्र नहीं भाई, तो फिर ये मफूले मुतलक कैसे? तो बतला दिया अय हज़फन भाई, कि इससे पहले इसका मौसूफ महजूफ है हज़फन, और वो है असल में मफूले मुतलक और ये उसकी सिफत है भाई। और वो हज़फन उसका फेल तो माकबल में वक़द युहज़फ़ु जिक्र है भाई। तो जवाजन असल में क्या है? हज़फन जवाजन, यह सिफत है और इसका मौसूफ हज़फन महजूफ है भाई। तो ये जवाजन मफ़ऊल मुतलक है खुद या अपने मौसूफ के एतबार से? हां, तो ये जवाजन ये मफ़ऊल मुतलक है अपने मौसूफ महजूफ के एतबार से अय हज़फन जवाजन। तो हज़फन मौसूफ और जवाजन उसकी सिफत, लेकिन जवाजन तो मस्दर है भाई, तवज्जो है, मस्दर है भाई। ये जो सिफत होती है इसका हमल होता है अपने मौसूफ पर। जानी रजुलुन आलिमुन, रजुलुन मौसूफ, आलिमुन उसकी सिफत। तो ये सिफत जो है इसका हमल होता है मौसूफ पर, यानी वो रजुल क्या है? आलिम है। तो यहां पर भी हजफ मौसूफ है और जवाज उसकी सिफत, और ये तो मस्तर है और मस्तर का हमल तो जात पर सही नहीं। तवज्जो है, मस्तर का हमल तो जात पर सही नहीं, मस्तर तो सिफत का नाम है, मस्तर का तो अपना खारिज में कोई वजूद नहीं होता। तवज्जो है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि खारिज में मस्तर का कोई वजूद नहीं है। मस्तर एक मानवी चीज है जो किसी की सिफत बनती है, खाना पीना सोना जागना चलना फिरना ये सब मसादिर हैं, खारिज में इनका कोई वजूद नहीं। आप कहेंगे भाई खारिज में तो हमें ये नजर आते हैं, एक आदमी चलता हुआ नजर आता है, बैठना है तो बैठा हुआ नजर आता है, खाना है तो हमें खाना खाता हुआ नजर आता है। तो मैंने बतलाया था कि जो हमें दिखाई देता है ये मस्तर से हासिल होने वाली सूरत है, मस्तर से हासिल होने वाली हैअत है, इसको हासिल बिल मस्तर कहते हैं। खारिज में हमें हंसना नहीं नजर आता, हां उस हंसने से जो हालत और जो सूरत हासिल हुई यानी हंसी वो हमें नजर आती है। तो खारिज में हंसना नहीं नजर आता बल्कि हंसी नजर आती है, क्योंकि हंसना मस्दर है और मस्दर का खारिज में वजूद ही नहीं है, तो फिर आपको नजर कैसे आएगा जब एक चीज का खारिज में वजूद ही नहीं है। तो हंसने से जो कैफियत और जो हैअत हासिल हुई, यानी हंसी, हमें खारिज में हंसी नजर आती है। चलना मस्तर है, हमें खारिज में चलना नहीं नजर आता बल्कि इस चलने से जो हैअत और सूरत हासिल हुई, यानी चाल जो है वो चाल हमें नजर आती है। इसी तरह दौड़ना मस्तर है, खारिज में हमें दौड़ना नहीं नजर आता बल्कि इससे जो हैअत और सूरत हासिल हुई, यानी दौड़, वो हमें नजर आती है। और यह है हासिल बिल मस्तर। क्या है? हासिल बिल मस्तर। देखो लफ्जों पे गौर करो, हासिल बिल मस्तर, मस्तर से जो चीज हासिल हो रही है, जो सूरत हासिल हो रही है, जो हैअत हासिल हो रही है, वो है ये भाई, तो वो हमें भी दिखाई देती है। तो देखो यहां मतन में क्या आया? जवाजन। और इसका मौसूफ हमने क्या निकाला? हज़फन। तो हज़फन हुआ मौसूफ और जवाजन हुई उसकी सिफत, और जवाज ये जो सिफत है तो मस्तर है, और मस्तर का हमल जात पर सही नहीं। तवज्जो है, मस्तर का हमल जात पर सही नहीं। तो लिहाजा फिर जात पर हमल करना हो तो फिर उस मस्तर को कभी इसमें फाइल के माना में ले लेते हैं, कभी इसमें मफूल के माना में। तो जवाज व माने जाइज के हुआ, अई हज फन जाइजन भाई। तो ये जवाज मस्तर किस माना में है? इसमें फाइल यानी जाइज के माना में। अई हज फन जाइजन, ऐसा हजफ जो जाइज है। देखो अब माना ठीक बन गया, पहले क्या था? हज़फ़न जवाज़न, ऐसा हज़फ़ जो जवाज है। भाई जवाज है क्या माना? अब क्या बन गया? हज़फ़न जाइज़न, ऐसा हज़फ़ जो जायज है। यहां अलबत्ता यहां आपके जहन में एक इश्काल आएगा कि आपने क्या कहा? हज़फ़न मौसूफ और जवाज़न उसकी सिफत, और मस्दर किसका नाम है? मस्दर माना का नाम है, मस्दर माना है, मस्दर वसफ है, लिहाजा ये किसी जात के लिए सिफत नहीं बन सकता, जात के लिए सिफत नहीं बन सकता। तो आपके जहनों में यह इश्काल आएगा कि हज़फ़न यहां जो मौसूफ है वो भी तो मस्दर है, हज़फ़न वो हज़फ़ भी तो क्या है? मस्दर है, और जवाज़न भी क्या है? मस्दर है। तो हज़फ़न जवाज़न, हज़फ़ जो मौसूफ है उसको आप कहते हैं वो जात है, वो जात है, और जो जवाज़न सिफत मस्दर है आप उसको कहते हैं यह सिफत है। जब वही मस्दर मौसूफ बनता है तो आप उसको जात करार देते हैं, और वही मस्दर जब सिफत बनता है तो आप उसको सिफत करार देते हैं, और सिफत का हमल तो जात पर नहीं हो सकता, जात पर जात का हमल तो हो सकता है, सिफत का हमल। हज़फ़न जवाज़न, इसको किस तावील में कर लिया? हज़फ़न जाइज़न, और जाइज़न जाइज़न ये जात माल वसफ पे दलालत कर रहा है, जाइज कोई चीज होगी भाई, तो इससे इसमें फाइल या इसमें मफूल बना लेंगे, वो जात माल वसफ पर दलालत करेगा, गोया वो भी जात हुई, और अब मौसूफ भी क्या है? जात, तो जात का जात पर हमल ठीक हो जाएगा। जैसे जैदुन अदलुन, जैद क्या है? जात, और अदलुन मस्दर है, और मस्दर का हमल तो जात पर सही नहीं, तो फिर आदल को किस माना में लेते हैं? आदिल के माना में, और आदिल इसमें फाइल है, और इसमें फाइल किस पे दलालत करता है? जात माल वसफ पर। आदिल का क्या माना? अदल करने वाला, मालूम हो कोई जात है जो अदल के साथ मौसूफ हो रही है, तवज्जो है। तो लिहाजा मस्तर को किस माना में ले लेते हैं? इसमें फाइल के माने में, इसमें मफूल के माने में, फिर ये जात माल वसफ बन जाता है, और फिर जात का जात पर हमल सही हो जाता है। तो इश्काल यहां ये होता है कि हज़फ़न जवाज़न, यहां तो मौसूफ भी मस्तर है और जवाज़न सिफत भी क्या है? मस्तर है, तो यहां तो हमल होना चाहिए। तवज्जो है, याद रखो जात से मुराद वो जात नहीं है जिसका खारिज में अपना अलग वजूद हो, जिसका, हाँ देखो जात कहते हैं उसको भी जात कहते हैं जिसका खारिज में अपना वजूद होता है, और जिसका अपना वजूद नहीं होता उसको सिफत कहते हैं। मसलन एक जैद है, एक जैद की सखावत है, जैद का खारिज में अपना अलग वजूद है, लेकिन जैद की सखावत ये तो जैद की सिफत है, इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं। जैद है तो यह सखावत है, जैद नहीं तो यह सखावत भी नहीं। तो जात तो किसे कहते हैं? जिसका खारिज में अपना अलग वजूद हो। और हज़फ़न जवाज़न भाई, इसके अंदर जो मौसूफ है हज़फ वो भी तो मस्तर है, उसका तो खारिज में उसका भी कोई वजूद नहीं, फिर आप उसको जात कैसे करार दे रहे हैं? बात समझ में आई? इश्काल क्या हुआ? हज़फ़न जवाज़न के हज़फ था मौसूफ, जवाज़न उसकी सिफत, और मौसूफ तो है जात, और सिफत तो क्या है? मस्तर, और मस्तर का हमल तो जात पर सही नहीं, लिहाजा जवाज़न को किस माना में ले लो? जाइज़न, हज़फ़न जाइज़न। तो इस पर इश्काल होता है कि भाई हजफन जो मौसूफ है वो भी तो मस्तर है, आप उसको जात कैसे कह रहे हैं? अभी तो आपने हमें बताया कि मस्तर का खारिज में कोई वजूद ही नहीं होता, तो ये जात कैसे है? तो जवाब याद रखना कि जात से मुराद वो जात नहीं है कि जिसका खारिज में अपना अलग वजूद हो, बल्कि जात से यहां मुराद है वो चीज जिसके बारे में खबर दी जा सके, वो चीज जिसके बारे में खबर दी जा सके, और मस्तर के बारे में भी तो खबर दी जा सकती है। तो जब मस्तर मौसूफ बनता है या मुबतदा बनता है तो फिर वो जात के दर्जे में हो जाता है। किसके दर्जे में? जात के दर्जे में हो जाता है, उसके बारे में खबर दी जा सकती है। जैसे पीछे मिसाल भी गुजरी थी, अल इल्म हसनुन, इलम अच्छी चीज है। अब देखो इलम यह भी तो मस्तर है, इलम का क्या माना? जानना। इलम का माना है जानना, देखो यह भी मस्तर है, लेकिन जब यह मुब्तदा बन गया तो यह जात बन गई। क्या बन गई? क्या माना? जात का यह माना नहीं खारिज में इसका अपना अलग वजूद हो गया, बल्कि जात किसे कहते हैं? जिसके बारे में खबर दी जा सके। और अल इल्म हसन, उन इल्म के बारे में मैं खबर दे रहा हूं आपको, हसन उनके वो अच्छी चीज है। तो मस्तर के बारे में भी खबर दी जा सकती है, तवज्जो है? तो फिर जब मस्तर के बारे में खबर दी जाए या मस्तर मौसूफ बने तो वो जात होता है, यानी उसके बारे में खबर दी जा सकती है, और तो वो जात के दर्जे में हुआ। तो जब जात के दर्जे में हुआ तो फिर उसकी सिफत या खबर मस्तर नहीं ला सकती। तो यहां पर भी हसफन ये मौसूफ है और जवाजन उसकी सिफत, जब हसफन मौसूफ है तो यह क्या हुआ? जात हुआ। क्या माना जात? यानी जिसके बारे में खबर दी जा सके, यानी जिसकी सिफत लाई जा सके। तो जब यह जात हुआ तो आगे जो जवाजन जो है वो तो सिफत ही है, वो तो मस्तर ही है, और मस्तर का हमल तो जात पर सही नहीं, लिहाजा फिर जवाजन को जायजन के माना में लेना पड़ेगा। भाई बात समझ में आ गई? तो यही बयान कर रहे हैं, देखिए कहते हैं जवाजन ऐ हज़फन जायजन, यानी ऐसा हज़फ जो जायज हो, ला वाजिबन वाजिब न हो। भाई यानी मुब्तदा को कभी हजफ करते हैं करीना कायम होते वक्त, और यह हजफ जायज होता है वाजिब नहीं। भाई वकद यजिबु हज़्फुहु, मैंने आपको बतलाया कि साहिब काफिया वो मकाम तो जिक्र करेंगे जहां मुब्तदा का हजफ जायज है, वो मकाम जिक्र नहीं करेंगे जहां मुब्तदा का हजफ वाजिब है, क्योंकि वो मकाम नहायत कलील हैं, वो नादिर हैं, और अन्नादिरु कल मादूम, नादिर को मादूम शुमार किया जाता है, तो लिहाजा उसको शुमार ही नहीं किया, जिक्र ही नहीं फरमाया। तो अब साहिबे जामी उसको बयान करेंगे, भाई पहले आप उसको समझ लें फिर किताब में भी देखते हैं। भाई याद रखो कभी कभार सिफत को वस्फियत से काट कर खबर बना दिया जाता है, कभी कभार सिफत को वस्फियत से काट कर खबर बना दिया जाता है मदा के लिए यानी तारीफ के लिए, या जम के लिए यानी मजम्मत के लिए, या तरहम के लिए। भाई कभी कभार सिफत को वस्फियत से काट कर खबर बना दिया जाता है, यानी यूं का उस पर रफा पड़ा जाता है, क्योंकि खबर पर क्या पढ़ते हैं? रफा। तो देखो मौसूफ सिफत का एराब तो एक होता है, जो मौसूफ पर एराब आएगा वही एराब सिफत पर भी आएगा, और मौसूफ पर तो रफा भी आ सकता है, नसब भी और जर भी, तो सिफत भी उसी के मुताबिक होगी। लेकिन सिफत को वस्फियत से काट कर उस पर वो एराब नहीं पड़ा जाता जो उस पर आना चाहिए, बल्कि उस पर रफा पढ़ दिया जाता है, रफा पढ़ दिया जाता है। किस लिए? मदा के लिए, या जम के लिए, या तरहम के लिए। तरहम का माना है रहम को तलब करना, किसी के लिए रहम की दुआ करना। भाई तवज्जो है? तो बाज औकात एक सिफत होती है उसको काट कर उस पर रफा पढ़ दिया जाता है मदा के तौर पर, या उस पर रफा पढ़ दिया जाता है मजम्मत के तौर पर, या उस पर रफा पढ़ दिया जाता है तरहम के लिए। बात समझ में आ गई? जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई इसमें देखो लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ है और यह मजरूर है, ये मजरूर है, मुजाफिले है इसम के लिए, और अर्रहमान और अर्रहीम ये इसकी सिफात हैं, और मौसूफ मजरूर है, तो दोनों सिफतें भी मजरूर हैं। भाई लेकिन बाज औकात सिफत को वस्फियत से काट कर उस पर रफा पढ़ दिया जाता है मदा के तौर पर, तो यहां आप यूं पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। वैसे तो है अर्रहमानिर्रहीमी, लेकिन इस पर क्या पढ़ दिया जाए? रफा पढ़ दिया जाए, रफा पढ़ दिया जाए। और रफा इस पर क्यों पड़ा, खबर होने की बिना पर, इसका मुब्तदा महजूफ है, ऐ हुवर रहमानुर रहीम, तो यह हुआ मुब्तदा और अर रहमानु उसकी खबर, और खबर पर क्या पढ़ते हैं रफा, इसलिए इस पर रफा पढ़ा गया। और वह हुआ को लफ्जों में जिक्र नहीं करना, उसका हजफ वाजिब है, इसलिए क्योंकि अगर वह हुआ लफ्जों में आप जिक्र कर दें और यूं कहें बिस्मिल्लाही हुवर रहमानुर रहीम, तो अब तो पता नहीं चलेगा कि यह पहले सिफत थी। भाई देखो ना, सिफत को काट कर उस पर रफा पढ़ना है तो उसके लिए दरमियान में हुआ मुब्तदा को बीच में नहीं लाएंगे। अगर आपको मुब्तदा को बीच में ले आते हैं फिर तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये अर्रहमान पहले लफ्ज़ अल्लाह की सिफत थी। भाई वो तो यही समझेगा हुआ मुब्तदा, अर्रहमान उसकी खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबर यह हुआ, यह अलग बात की जा रही है। लेकिन जब हुआ को हजफ ही रखा और अर्रहमान को वसवियत से काटकर उस पर रफा पढ़ दिया तो सुनने वाला फौरन चौंक उठेगा कि भाई मौसूफ तो मजरूर है और सिफत पर रफा पढ़ दिया, तो वो समझ जाएगा कि ये यहां पर मसलन मदा के लिए इस पर रफा पढ़ा गया है। तवज्जो है, एक है मौसूफ की वैसे सिफत लाना और एक है उसमें मदा को भी अपनी तरफ से शामिल कर देना कि मैं क्या कर रहा हूं, मदा कर रहा हूं भाई। तो फिर लिहाजा कैसे पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाही अर्रहमानुर रहीम, हुआ को नहीं पढ़ना, हुआ महजूफ है वजूबन भाई। तो यहां पर रफा पढ़ा गया मदा की बिना पर, किस लिए, मदा की बिना पर, मुतकल्लिम जो है अल्लाह की मदा भी कर रहा है साथ भाई। और कभी कभार रफा पढ़ा जाता है मजम्मत के लिए भी भाई, और उसकी मिसाल है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, तो अश्शैतानी मजरूर है यह है मौसूफ, और अर रजीमी यह भी मजरूर है यह उसकी सिफत है, लेकिन कहने वाला शैतान के साथ मजम्मत भी करना चाहता है तो वो इस पर रफा पढ़ देगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जब ये अर्रजीम पर रफा पड़ा गया तो सुनने वाला चौंक उठेगा कि भाई मौसूफ तो मजरूर है तो इसको भी मजरूर होना चाहिए था, लेकिन इस पर रफा पड़ा गया तो वो समझ जाएगा कि ये मजम्मत के लिए इस पर रफा पड़ा गया। तो यहां पर सिफत को वसफियत से काटकर उस पर रफा पड़ा गया, किस लिए, मजम्मत के लिए भाई। और कभी कभार यह तरहुम के लिए ऐसा किया जाता है, मसलन मैं कहता हूं मररतु बिअब्दी का अलमिस्कीनी, मरर तू मैं गुजरा बेआबदी का आपके उस गुलाम पर, अलमिस्कीन जो मिस्कीन, यानी मैं आपके मिस्कीन गुलाम पर गुजरा, मरर तू बेआबदी कल मिस्कीनी, आबदी का पर बा जारा दाखिल है वो मजरूर है, तो अलमिस्कीनी उसकी सिफत भी क्या है, मजरूर है, लेकिन आप इसको वसवियत से काट कर इस पर रफा पढ़ देते हैं, मरर तू भी आप दिकल मिस्कीनो, देखा रफा पढ़ दिया, तो ये किस लिए है, यहां तरहम के लिए भाई, कि इस पर क्या किया जाए, रहम किया जाए भाई। तवज्जो है, तो क्या किया जाता है बाज औकात, सिफत को वसफियत से काट कर उस पर रफा पढ़ा जाता है, किस लिए, मदा के लिए या जम के लिए या तरहम के लिए भाई। और इसमें फिर मुब्तदा को हजफ करना वाजिब है, अगर मुब्तदा को लफ्जों में जिक्र करेंगे तो फिर तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यह पहले सिफत थी, अब इस पर रफा पड़ा गया है, तो इस सूरत में मुब्तदा का हजफ वाजिब है भाई, वाजिब है। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वक़द यजिबु हज़्फ़ुहु, और कभी कभार मुब्तदा का हजफ वाजिब होता है, इदा क़ुति'अ नअ'तु बिर्रफ़्इ, नअ्त वसफ को कहते हैं, नअ्त सिफत वसफ सबका एक ही माना है, कहते हैं इदा कुतिअ नअ्तु बिर्रफ़्इ, जब नअ्त यानी वसफ को काट दिया जाए, बिर्रफ़्इ किसके जरिए, रफा के जरिए, यानी उस पर रफा पड़ा जाए, नहु मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि अहलुल हम्दी, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलुल हम्दी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अहलुल हम्दी जो हम्द के का अहल है, जो हम्द के लायक है। अब देखो ये अहलुल हम्द ये सिफत है लफ्ज़ अल्लाह की, और लफ्ज़ अल्लाह पर लाम जारा दाखिल है, वो मजरूर है, और मौसूफ का जो एराब होता है वही सिफत का भी, तो असल में यूं था अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिल हम्दी, अहलिल हमदी, फिर इसको वसवियत से काटकर इस पर रफा पड़ा गया, अल्हम्दुलिल्लाही अहलुल हमदी। इससे पता चल गया कि यहां मुतकल्लिम का मकसूद मदा है भाई। ये किस लिए वसवियत से क्यों काटा गया है? मदा के लिए भाई। और देखो ये अहलुल हम्द पर रफा पड़ा गया, मालूम हुआ इसका मुब्तदा महजूफ है। और वो क्या है? हुआ, वही बयान कर रहे हैं साहिब जामी भी, आई हुआ अहलुल हम्दी, यानी वो हम्द का अहल है, हम्द के लायक है भाई। वह इन नमा वजब हजफू, भाई ये मुब्तदा का हजफ वाजिब क्यों है? मैंने बयान कर दिया, मुझे बताइए क्या वजह? क्योंकि अगर मुब्तदा को जिक्र कर देंगे फिर तो नहीं पता चलेगा कि ये पहले वसफ था और अब इसको क्या बनाया गया है? खबर बनाया गया है। हुआ अहलुल हम्द अगर हुआ भी साथ जिक्र कर दिया जाए फिर तो किसी को नहीं पता चलेगा कि अहलुल हम्द पहले सिफत थी फिर इसको मुब्तदा के लिए खबर बनाया गया। तो कहते हैं इन नमा वजब हज़्फ़ुहु, कहते हैं इस मुब्तदा का हज़्फ़ वाजिब है, लियो अलमा, ताकि ये बात जान ली जाए कि अन्नहु काना फिल असली सिफतन, कि असल के अंदर सिफत थी। फ़क़ुतिअ लिक़स्दिल मदह अव अज़्ज़म अव ग़ैर ज़ालिक, फिर इसको काट दिया गया यानी वसफियत से काट दिया गया, लिक़स्दिल मदह, मदा के इरादे से, अव अज़्ज़म या ज़म के इरादे से, अव ग़ैर ज़ालिक या इसके अलावा यानी तरहम के लिए भाई। फलाउ ज़ाहर अल मुब्तदाउ, अगर मुब्तदा जाहिर हो भाई यानी उसको भी लफ्जों में जिक्र कर दिया जाए, लम यतबयन ज़ालिका, तो फिर यह बात वाज़ह नहीं होगी, ये बात जाहिर नहीं होगी। अगर हुआ अहलुल हम्द कह दिया जाता फिर तो पता ना चलता कि यह असल में क्या था, वसफ था और फिर इसको खबर बनाया गया है। तो कहते हैं फलाउ ज़ाहर अल मुब्तदा उलम यतबयन ज़ालिका, अगर मुब्तदा जाहिर हो जाए तो फिर यह बात जाहिर नहीं होगी कि यह असल में क्या थी, सिफत थी, फिर इसको काटकर खबर बनाया गया है। यहां तक बात समझ में आ गई। याद रखो मदा जम और तरहम के लिए जिस तरह रफा पढ़ना जायज इसी तरह नसब पढ़ना भी जायज है भाई। जैसे देखें बिस्मिल्लाही अर्रहमान अर्रहीम, नसब पढ़ दिया जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम, नसब पढ़ा जाए और यह भी उसी मदा के लिए है और इस सूरत में यह फिर मफ़ऊल बनेगा। नसब खुद तो नहीं आता, नसब के लिए कोई आमिल चाहिए, तो यहां फेल आनी महजूफ है। बिस्मिल्लाहि अर्रहमान अर्रहीम, आनी ये भाई आप कलाम में आम इस्तेमाल करते हैं यानी का लफ्ज, बोलते हैं या नहीं? किसी लफ्ज का माना बयान करते हुए कहते हैं यानी के, तो इसी यानी से आनी मुतकल्लिम का सीगा है। आना यानी का माना होता है मुराद, मुराद आनी मेरी मुराद जो है, बिस्मिल्लाही मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, आनी रहमान और रहीमा मेरी मुराद वो जो कि रहमान है और रहीम है। और इस सूरत में भी यह आनी को हजफ करना वाजिब है। अगर आनी को लफ्जों में जिक्र कर देंगे तो फिर तो नहीं पता चलेगा कि यार रहमान और रहीम पहले सिफत थे अब इसको काट कर आनी के लिए मफूल बनाया गया है। उसी तरह साथ जुड़ा हो और मौसूफ वाला एराब पढ़ने के बजाय जब आप नसब पढ़ेंगे तो सुनने वाला खुद ही समझ जाएगा कि यह मदा जम या तरहम की वजह से यह नसब दिया जा रहा है। तो यह मिसाल किसकी थी? मदा वाली, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, ये नसब है बिनाबर मदा के। और मजम्मत की वही मिसाल, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ आनिर रजीम। और इसी तरह तरहम के लिए भी वही मिसाल बना लें, तरहम के लिए मसलन मररतु बिज़ैदिनिल मिस्कीना, मैं गुजरा जैद पर, अल मिस्कीना वो जैद जो मिस्कीन है। अब देखो ज़ैदिन मजरूर है उस पर बात जार्रा दाखिल है और उसकी सिफत अलमिस्कीनी यह भी मजरूर होनी चाहिए थी लेकिन इसको वसफियत से काटकर इस पर नसब पड़ा गया। तो मदा जम और तरहम के लिए नसब भी पढ़ा जाता है और रफा भी। रफा पढ़ा जाए तो समझ जाए यह खबर है और इसका मुब्तदा महजूफ है और उसको हजफ करना वाजिब है, और नसब पढ़ा जाए तो समझ जाए कि यह मफूल भी ही है आनी फेल के लिए। आनी फेल आना जमीर इसके अंदर फाइल और आगे जो आएगा वह है इसका मफूल। बात समझ में आ गई भाई? यहां पर देखो लफ्ज आया अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तवज्जो है जरा किताब पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाही अहलुल हम्दी, इसमें देखो लिल्लाह लिल्लाह, देखो इसमें दो लाम हैं भाई। बहुत से तुलबा ये गलती करते हैं भाई, वो लफ्ज अल्लाह पर जब लाम जारा दाखिल करते हैं तो फिर तीन लाम लिख देते हैं भाई, तीन लाम लिखते हैं, हालांकि दो ही लाम लिखेंगे भाई। याद रखो ये जो लफ्ज अल्लाह को लिखा जाता है दो लाम के साथ, ये लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है, लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है। अल्लाह देखो इसमें लाम मुशद्दद है, और लाम जो हर्फ मुशद्दद हो वो दो लिखते हैं या एक लिखते हैं? मर्रा, मर्रा इसमें रा मुशद्दद है, और एक रा लिखते हैं या दो? एक। तो जो हर्फ मुशद्दद होता है वो दरअसल दो हर्फ होते हैं लेकिन लिखते एक ही हैं और उस पर शद डाल देते हैं। तो अल्लाह इसके अंदर भी देखो अरबी कवानीन के मुताबिक एक लाम लिखना चाहिए और उस पर शद डालना चाहिए, लेकिन ये लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है कि इसमें दो लाम लिखे जाते हैं भाई। वाली साहब रहमहुल्लाह की किताब है फतहुल्लाह भाई, उसमें इस लफ्ज अल्लाह की खसूसियात वाली साहब ने जिक्र फरमाई है भाई, और वो कोई 1200 या इससे भी जायद सफहात पर मुश्तमिल किताब है दो जिल्दों में, और उसमें सिर्फ ये लफ्ज अल्लाह की खसूसियात जमा की है उन्होंने, और वहां पर कोई 850 से ज्यादा इस एक लफ्ज की खसूसियात जिक्र फरमाई हैं, जिसे पता चलता है कि वो जात जितनी अजीम है उस जात का नाम भी उतना ही अजीम है भाई। और उसमें एक खसूसियत यह भी दर्ज है कि ये जो लफ्ज अल्लाह में दो लाम लिखे जाते हैं ये लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है, वरना अरबी कवानीन के मुताबिक एक लाम लिखना चाहिए क्योंकि यह हर्फ मुशद्दद है और हर्फ मुशद्दद एक ही लिखा जाता है भाई। तो लफ्ज अल्लाह में दो लाम लिखे जाते हैं और फिर जब इस पर लाम जारा दाखिल होता है तो अब तो लबा तीन लाम लिख देते हैं, नहीं भाई अब जाब्ते के मुताबिक बन जाएगा, एक लाम जारा हो जाएगा और एक लाम मुशद्दद हो जाएगा, तो दो ही लाम लिखने हैं तीन नहीं लिखने भाई। यहां तक बात समझ में आ गई? मालूम हुआ कभी मदा जम और तरहम की बिना पर कभी रफा पढ़ा जाता है कभी नसब भाई। असल मकसद होता है माकबल में जो मौसूफ है उससे एराब को बदलना है, एराब को उससे क्या करना है बदलना है भाई। तो जब बदलेगा फिर ही सुनने वाले को पता चलेगा। मसलन मसलन जानी जैदुनिल करीमो, जैदुन मरफू है, अल करीमो उसकी सिफत यह भी मरफू है। अब मैं मदा भी करना चाहता हूं साथ, जानी जैदुनिल करीमो, तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूं मदा भी करना चाहता हूं। अब आप यह कहें कि इसको यह खबर बना दी मैंने किसके लिए, हुआ के लिए, मदा के लिए रफा भी पढ़ते हैं नसब भी, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं इस पर रफा, मैंने क्या पढ़ा जा अनी जैदुनिल करीमो। कुछ आपको पता चला मदा का? नहीं पता चला, क्योंकि जैद मरफू है तो अल करीम भी मरफू है, तो यहां तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। तो लिहाजा जब मौसूफ का जो एराब है सिफत का अगर वही एराब है फिर तो मदा या तरहम वगैरह का पता ही नहीं चलेगा, तो उसको बदलना जरूरी है। लिहाजा यहां पर जब मौसूफ मरफू है तो फिर अगर आप इसको हुआ के लिए खबर बनाएंगे ये सिफत को फिर तो किसी को पता नहीं चलेगा, लिहाजा ऐसे मौके पर फिर नसब पढ़ा जाएगा भाई ताकि पता चले जानी जैदुनिल करीमा। अब पता चल गया कि ये तो सिफत का इराब अलग आ रहा है, मालूम हुआ ये मदा की बिना पर मंसूब है आनिल करीमा। बात समझ में आ गई? आगे देखिए कहते हैं वयजिबु हस्फुहु अयज़न इंदा मन काल फी निअमर रजुलु ज़ैदुन इन तकदीरहु हुवा ज़ैदुन। भाई देखिए निअमर रजुलु ज़ैदुन इसके अंदर दो तरकीबें हैं भाई। एक तरकीब क्या, निअमर निअमा फेल अज़फ़ाल मदा अर रजुलु मरफू लफ्ज़न इसका फाइल फेल अपने फाइल से मिलकर खबर मुकदम है और ज़ैदुन मुब्तदा मुअख़्खर है। और फिर यह खबर यह तो नेमर रजुल पूरा जुमला है और खबर को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो दरमियान में रबत जरूरी है। तो कुछ सफे पहले साहिब जामी ने आयद की अकसाम जिक्र की थी, उनमें बतलाया था कि आयद कभी कभार अलिफ्लाम होता है, तो यहां पर यह जो अर रजुल पर अलिफ्लाम आया इसके जरिए इशारा हो रहा है जैद मुब्तदा की तरफ, तो इसके जरिए रबत आ गया, यह आयद है भाई। और दूसरी तरकीब है कि निअमर रजुलू इसको खबर मुकदम न बनाएं, इसको अलग जुमला बना दें, निमा फेल अज फाइल मदा अर्रजुल मरफू लफजन इसका फाइल फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ। और जैदुन को इस नियमर रजुल के लिए मुबतदा न बनाए बल्कि जैद के लिए हुआ महजूफ निकाल लें और जैद को उसकी खबर बना दें। नियमर रजुलु हुआ जैदुन तो हुआ मुबतदा महजूफ और जैदुन मरफू लफजन उसकी खबर। तो इस तरकीब के मुताबिक यहां दो जुमले बन गए, नियमर रजुल जुमला फेलिया और हुआ जैदुन जुमला इस्मिया बन गया। और इसके अंदर यह जो हुआ है यह है मुब्तदा और इसको हजफ करना वाजिब है, इसको हजफ करना वाजिब है क्योंकि अर रजुल से यह जैद ही मुराद है। नियमर रजुल वो कितना अच्छा आदमी है तो यह अर रजुल से कौन मुराद है, जैद ही मुराद है। तो ताकि अर रजुल और जैद के दरमियान फसल ना आ जाए भाई, तो लिहाजा यहां फिर हुआ को हजफ करना वाजिब। बात समझ में आई? देखो यहां दो तरकीबें होती हैं, एक तरकीब के मुताबिक नियमर रजुल खबर मुकदम और जैद क्या है मुब्तदा मुअख्खर, फिर तो यहां कोई हजफ नहीं है, फिर तो यह हमारी बहस से खारिज है। हम बहस कर रहे हैं जहां मुब्तदा को हजफ करना वाजिब है वह दूसरी तरकीब के मुताबिक, दूसरी तरकीब के मुताबिक नियमर रजुल जुमला फेलिया अलग और हुआ जैदुन आगे अलग जुमला इस्मिया। तो ये जो हुआ जैदुन में हुआ मुब्तदा और जैदुन उसकी खबर है, इस हुआ को हजफ करना वाजिब है भाई। तो कहेंगे इसी तरह नियमर रजुलु जैदुन, लेकिन तरकीब में दो जुमले अलग अलग बनाएंगे, जैद के लिए हुआ मुब्तदा महजूफ निकालेंगे और इस हुआ मुब्तदा को हजफ करना वाजिब है भाई। तो ये वो चंद जगह हैं जहां पर मुब्तदा को हजफ किया जाता है। तो ये चूंकि निहायत कलील थी इसलिए साहिब काफिया ने इनको मतन में जिक्र नहीं फरमाया। तो कहते हैं वयजिबु हज़्फुहु अयज़न इंदा मन काला फी नियमर रजुलु ज़ैदुन इन तकदीरहु हुवा ज़ैदुन, और मुब्तदा का हज़्फ उनके नजदीक भी वाजिब है जो नियमर रजुलु ज़ैदुन के बारे में यह फरमाते हैं कि इन तकदीरहु कि इस कलाम की तकदीर क्या है, हुआ ज़ैदुन, हुआ जैदुन इसकी तकदीर है, यानी यहां हुआ मुब्तदा महजूफ है और जैदुन उसकी खबर है। तो उनके नजदीक यहां मुब्तदा का हजफ वाजिब है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई? का कौल मुस्तहिल्ली अल मुब्तदा उल महजूफ जवाजन मिसलुल मुब्तदा इल महजूफी फी मकूल मुस्तहिल मुबसिर लिल हिलाल राफी सौतहु इंद इबसारिही। ये मुश्किल इबारत है, जरा समझ लें भाई, पहले जरा मतन देख लें। का कौल मुस्तहिल अल हिलाल वल्लाह, मुस्तहिल कहते हैं चांद को देखने वाला, ये हिलाल से है, हिलाल से। मुस्तहिल क्या माना? चांद को देखने वाला भाई, नया महीने का चांद, जैसे रमजान का चांद देखने के लिए लोग जमा होते हैं या ईद का चांद देखने के लिए लोग जमा होते हैं, तो ये जो चांद को देखने वाले हैं इनको क्या कहेंगे? मुस्तहिल भाई, चांद को देखने वाला। और इसी तरह मुस्तहिल आवाज को बुलंद करने वाला, उसको भी मुस्तहिल कहते हैं। और यहां दोनों माना ठीक हैं क्योंकि लोग मुस्तहिल चांद को देखने वाले वो उमूमन ऊंची आवाज से बोलते हैं, जिसको चांद नजर आ जाए तो वो बड़ा ऊंचा कहता है वो चांद है भाई मुझे नजर आ गया भाई। तो कहते हैं का कौलिल मुस्तहिल्ली, जैसे कि चांद को देखने वाले का कौल है अल हिलालु वल्लाही। असल में कलाम यूं है हाजल हिलालु वल्लाही, ये चांद है वल्लाही अल्लाह की कसम। तो देखो हाजा मुब्तदा महजूफ है और अल हिलालु उसकी खबर है भाई, और साथ वल्लाह कसम को साथ जिक्र कर दिया। आगे साहिब जामी बतलाएंगे कि भाई ये क्या वजह है, ये वल्लाह कसम को साथ क्यों जिक्र किया। साहिब काफिया के पास तो अल्फाज थोड़े होते हैं तो सिर्फ अल हिलाल कह देते, ये वल्लाह कसम को साथ मिलाने की क्या जरूरत थी, इससे तो बात बिला वजह लंबी हो गई। तो उसका जवाब देंगे कि चूंकि चांद देखने वालों की अमूमन आदत होती है चांद दिखाई दे तो चांद की तरफ इशारा करते हुए कसम भी खाते हैं, तो उनकी आदत के मुताबिक कसम को भी साथ जिक्र कर दिया। और नीज इस वजह से कि हमारी बहस चल रही है उस खबर के बारे में जिसके मुब्तदा को हजफ किया जाता है, जिसके मुब्तदा को, तो अगर आगे कसम न होती तो अल हिलाल पर वक्फ करना पड़ता भाई, क्योंकि अरब जो है वक्फ करते हैं कलाम के आखिर में, तो फिर कैसे पढ़ते? अल हिलाल। अब तो पता नहीं चलेगा कि अल हिलाल मरफू है या मनसूब है। अगर इसको खबर बनाना जायज है तो इसको मफूल भी ही बनाना भी जायज है। फिर तो यह भी एहतमाल आ गया कि यह खबर नहीं है बल्कि यह मफूल भी ही है फिल महजूफ रईतु के लिए, अई रईतुल हिलाला, और रईतु को हजफ कर दिया और सिर्फ क्या कह दिया अल हिलाल। तवज्जो है। तो अगर सिर्फ अल हिलाल लफ्ज को जिक्र करते तो उस पर तो वक्फ होना था और फिर पता नहीं चलना था कि यह मरफू है या मनसूब है, उसमें तो फिर नसब का भी एहतमाल आ जाना था। लिहाजा आगे साहिब काफिया ने कसम भी मिला दी। अब अल हिलाल का लाम जो है वस्ते कलाम में आ गया और वस्ते कलाम में तो वक्फ नहीं किया जाता, तो अब उस पर जब रफा पड़ा जाएगा तो पता चल जाएगा कि यह मफूल भी ही नहीं है, बल्कि जब यह मरफू है तो इसका मुब्तदा महजूफ है, यह उसके लिए खबर है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं का कौल इल मुस्तहिल अल हिलाल वल्लाही, जैसे कि चांद देखने वाले का कौल अल हिलाल वल्लाही, ऐ हाजल हिलाल वल्लाही, वो चांद है अल्लाह की कसम। माना समझ में आ गया, हाजा कह लो या जालिका कह लो, तो ये अल हिलाल वल्लाही, ये मिसाल जिक्र कर रहे हैं साहिब काफिया। किसकी मिसाल जिक्र कर रहे हैं? वो मुब्तदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है, तो अल हिलाल वल्लाह भी कहा जा सकता है और मुब्तदा को जिक्र कर दिया जाए हाजल हिलाल वल्लाह या जालिक अल हिलाल वल्लाह, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वो जगह जिक्र हो रही है जहां मुब्तदा को हजफ करना जायज है, वाजिब नहीं। तो ये अल हिलाल क्या बन रहा है तरकीब में? खबर। इसका मुब्तदा महजू। तवज्जो है, मैं इश्काल जिक्र करने लगा हूं। अल हिलाल क्या बन रहा है तरकीब में? खबर है और इसका मुब्तदा महजूफ है। बात किसकी चल रही है पीछे? वकद युहज़फुल मुब्तदा उलिकियाम करीनतिन जवाजन, कभी कभार मुब्तदा को करीना कायम होते वक्त जवाजन हजफ कर लिया जाता है। कौल अल मुस्तहिली, जैसे कि चांद देखने वाले का कौल अल हिलाल वल्लाही, जैसे यह है। साहिब काफिया पर इश्काल होता है, ऐ साहिब काफिया आप हमें मिसाल में वो मुबतदा जिक्र करते जिसको हजफ करना जायज है। आपने तो खबर को जिक्र कर दिया मिसाल में। अल हिलाल वल्लाही, अल हिलाल मुबतदा है या खबर है? अल हिलाल, ऐ हाज अल हिलाल, अल हिलाल तो क्या बन रहा है? खबर। बात किसकी चल रही है? वो मुब्तदा जिसको हजफ करना जायज हो, तो आपको वो मुब्तदा की मिसाल जिक्र करनी चाहिए थी और आपने तो किसकी मिसाल जिक्र कर दी? खबर की मिसाल जिक्र कर दी। इश्काल समझ में आया? तो अब साहिब जामी उसका जवाब देंगे, जवाब देंगे। देखो किताब पर कहते हैं का कौल इल मुस्तहिली, जैसे कि मुस्तहिल का कौल है, मुस्तहिल का यह कौल है, तो इस मुस्तहिल के कौल में अल हिलाल ये तो खबर बन रहा है और मिसाल किसकी देनी चाहिए थी? मुबतदा की। तो उसको अब इबारत निकालकर साहिब जामी बतलाएंगे कि ये उसी मुबतदा की मिसाल है। यानी साहिब काफिया ये कहना चाहते हैं कि वो मुबतदा जिसको हजफ किया जाता है उसकी मिसाल, तवज्जो है, वो मुबतदा जिसको हजफ किया जाता है उसकी मिसाल मुस्तहिल का यह कौल है जिसके अंदर मुबतदा को जवाजन हजफ किया गया है। वो मुबतदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है उसकी मिसाल मुस्तहिल का यह वाला कौल है जिसमें मुबतदा को जवाजन हजफ किया गया है। नहीं, तवज्जो, किसकी मिसाल जिक्र करना चाहते हैं? वो मुब्तदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है उसकी मिसाल ये कौल मुस्तहिल है। कौन सा कौल मुस्तहिल? ये अल हिलाल वल्लाही, जिसके अंदर मुब्तदा को जवाजन हजफ किया गया है, इसके अंदर मुब्तदा को, तो ये उस मुब्तदा की मिसाल बन गई या नहीं जिसको जवाजन हजफ किया जाता है? बात समझ में आ गई। तो कहते हैं का कौल मुस्तहिली अल मुब्तदा उल महजूफ जवाजन, देखो का कौल मुस्तहिल, सुनो इबारत पे नजर रखो, मुश्किल मकाम है। का कौल मुस्तहिल जार मजरूर है, काफ जार रहा है, काफ जार रहा है, और ये अल हिलाल वल्लाही ये मकूला है कौल के लिए, ये क्या है? मकूला है कौल के लिए। का कौल मुस्तहिल ये जार मजरूर है, और जार मजरूर मैंने आपको बताया ये हमेशा क्या बनते हैं? खबर बनते हैं, मुब्तदा नहीं बनते। तो इसके लिए मुब्तदा क्या है? तो इसके लिए क्या मुब्तदा निकालेंगे? देखो साहिब जामी निकाल रहे हैं, अल मुब्तदा उल महजूफ जवाजन, यह है मुब्तदा, वो मुब्तदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है। कौल इल मुस्तहिल्ली, वो किसकी तरह है? कौल मुस्तहिल की तरह है। और काफ किस माना में है? मिसल के माना में। तवज्जो है, यह इबारत पर नजर रखो, कौल इल मुस्तहिल्ली, यह काफ किस माना में? मिसल के माना में। और याद रखो इस कौल से पहले मुब्तदा का लफ्ज महजूफ निकाल लें, का मुब्तदा ई कौल इल मुस्तहिल्ली, का मुब्तदा ई, तर्जमा करें, देखो कौल इल मुस्तहिल को क्या बनाया? खबर। इसका मुब्तदा क्या है? वो जो साहिब जामी ने आगे निकाला है, अइल मुब्तदा उल महजूफ जवाजन, वो मुब्तदा, ये कौल इल मुस्तहिल से पहले निकाल लो, वो मुब्तदा जो जवाजन महजूफ किया जाता है, कौल इल मुस्तहिल, वो किसकी तरह है? कौल मुस्तहिल की तरह। और कौल से पहले मुब्तदा का लफ्ज महजूफ निकाल लो, वो मुब्तदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है, वो का मुब्तदा ई कौल इल मुस्तहिल्ली, वो मुस्तहिल के कौल के मुब्तदा की तरह है। वो किसकी तरह है? वो मुब्तदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है, वो मुस्तहिल के कौल के मुब्तदा की तरह है। और मुस्तहिल के कौल का जो मुब्तदा है वो तो क्या है? महजूफ है। वो क्या है? लिहाजा जो आपने कौल से पहले मुब्तदा निकाला उसकी सिफत भी साथ ले आए। आपने कौल से पहले मुजाफ क्या महजूफ निकाला? मुब्तदा। जैसे कि मुस्तहिल के कौल का मुब्तदा है, और मुस्तहिल के कौल का मुब्तदा वो भी क्या है? महजूफ। अब सुना इबारत, मुब्तदा क्या है? का कौल इल मुस्तहिल के लिए मुब्तदा निकाला, वो क्या है? अल मुब्तदा उल महजूफ जवाजन। बात समझ में आ? वो मुब्तदा जिसको हजफ किया जाता है जवाजन, का मुब्तदा ई कौल इल मुस्तहिल्ली, वो मुस्तहिल के कौल के मुब्तदा की तरह है, जिसको क्या कर लिया गया है? हजफ कर लिया गया है। तो देखो कहते हैं अइल मुब्तदा उल महजूफ जवाजन, यानी वो मुब्तदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है, मिसलुल मुब्तदाई, मतन में आया था काफ, और उस काफ का क्या माना? मिसल, तो मिसल का लफ्ज लिया है। और काफ के बाद मैंने क्या बताया? किसको महजूफ निकालो? मुब्तदा को। तवज्जो है, मुब्तदा, मिसलुल मुब्तदा इल महजूफी फी कौल इल मुस्तहिल्ली, जैसे कि वह मुब्तदा जो महजूफ है मुस्तहिल के कौल में। भाई देखो मैंने क्या कहा? का कौल इल मुस्तहिल, यह काफ के बाद क्या महजूफ है? मुब्तदा। का मुब्तदा इ कौल इल मुस्तहिल्ली, और मुब्तदा मुजाफ और कौल उल मुस्तहिल मुजाफिल है। और आपने पढ़ा है कभी इजाफत फी के माना में होती है, जब मुजाफिल है मुजाफ के लिए जर्फ हो। सलातुल लैली, ऐ सलातुन फिल लैली, सलात मुजाफ, अल लैली मुजाफुन इले, सलातुल लैल का क्या माना? वो नमाज जो रात में पढ़ी जाए। मालूम हुआ ये जो अल लैल मुजाफिल है ये मुजाफ यानी सलात के लिए जर्फ है, तो यहां फी मुकद्दर है। तो ये सलातुल लैल किस माना में है? भाई सलात है मुजाफ, अल्लैल है मुजाफोन इले, और देखो मुजाफिल है मुजाफ के लिए जर्फ है, ये सलात इस लैल में है, तो यहां क्या मुकद्दर है? फी। आई सलातुन फिल लैली, आई सलातुन फिल लैली, तो यहां पर भी इसी तरह, यहां कौल इल मुस्तहिल से पहले क्या महजूफ निकाला? मुब्तदा। का मुब्तदा इ कौल इल मुस्तहिल्ली, मुब्तदा मुजाफ और कौल इल मुस्तहिल मुजाफोन इले, और ये मुब्तदा जो है इसके लिए कौल मुस्तहिल क्या है? जर्फ है। क्या है वो मुब्तदा? किस में आया है? कौल मुस्तहिल में आया है ना, वो जो महजूफ है, तो इस मुब्तदा के लिए कौल मुस्तहिल क्या है? जर्फ। और उस जर्फियत के लिए क्या लाते हैं? फी। तो इसीलिए साहिब जामी फी लाए, उस साहिब जामी ने उस इजाफत को तोड़ दिया। जैसे सलातुल लैल ये इजाफत है, इसको जरा तोड़ दें, सलातुन फिल लैली, आप फी ले आए, इजाफत टूट गई। तो यहां पर भी मैंने क्या कहा था कि कौल मुस्तहिल से पहले मुब्तदा महजूफ है, और ये इजाफत कौन सी है? फी के साथ है। अब इस इजाफत को तोड़ दिया नीचे साहिब जामी ने, क्या कहा? मिसलुल मुब्तदा इल महजूफ, मुब्तदा की सिफत महजूफ भी ले आए। जरा इस महजूफ को जरा हटा दें, मिसलुल मुब्तदा फी मकूल इल मुस्तहिल, इबारत वही बन गई या नहीं? काफ किस माना में है? मिसल, और काफ के बाद क्या महजूफ था? मुब्तदा, और मुब्तदा के बाद क्या ले आए? फी ले आए, और कौल बमाने मकूल के है, कौल बमाने मस्तर है ना, मस्तर, जैसे मुस्तहिल का कौल, कौल का माना तो कहना, तो यहां कौल बोलकर क्या मुराद है? मकूला मुराद है, जो बात उसने की है। मस्तर कभी इसमें फाइल और इसमें मफूल के माना में आता है या नहीं आता, तो यहां पर भी कौल मस्तर है तो यह मस्तर किस माना में है, कौल। ये देखो ना अल हिलाल वल्ला, ये कौल है और कौल तो मस्तर है तो मालूम हुआ ये कौल बमाने मकूल के है। मकूल का क्या माना, वो बात जो की गई है वो बात, तो ये अल हिलाल वल्लाह ये बात की गई है, ये कौल नहीं है बल्कि ये क्या है, मकूल है। तो अरबी जुबान में मस्तर बमाने मफूल के आम इस्तेमाल होता है, जैसे खल्क बमाने मखलूक भाई, इसी तरह कौल बमाने मकूल भाई। तो ये जो आप अक्सर जुमले बोलते हैं ये फलां का कौल है, ये फलां का कौल है, ये कौल किस माना में होता है, मकूल के माना में होता है, ये फलां का मकूला है यानी उसकी कही हुई बात है भाई। तो लिहाजा इबारत समझ में आ गई, का कौल इल मुस्तहिल, ये काफ के बाद हमने क्या निकाला था, मुबतदा, मुबतदा का लफ्ज, और उस मुबतदा की इजाफत थी कौल इल मुस्तहिल की तरफ, और ये इजाफत किसके साथ थी, फी के साथ। तो का कौल इल मुस्तहिल ये सारा क्या है, खबर, ये जार मजरूर है ना, और जार मजरूर के लिए मुबतदा भी चाहिए, किसकी खबर है, तो का कौल इल मुस्तहिल इसके लिए मुबतदा क्या है, आगे जो आया अल मुबतदा उल महजूफ जवाजन, यह है मुबतदा, वो मुबतदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है, का कौल इल मुस्तहिल, वो मुस्तहिल के इस कौल की तरह है, और इस मुस्तहिल के कौल की तशरी क्या की, मिसलुल मुबतदा इल महजूफी फी मकूल इल मुस्तहिल, वो मुबतदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है, मिसलुल मुबतदा इल महजूफी फी मकूल इल मुस्तहिल, ये उस मुबतदा के मिसल है जो महजूफ है मुस्तहिल के इस कौल में, मुस्तहिल के इस मकूले में। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं का कौल इल मुस्तहिल अल मुबतदा उल महजूफ जवाजन, यानी वो मुबतदा जिसको जवाजन हजफ किया जाता है, मिसलुल मुबतदा इल महजूफी फी मकूल इल मुस्तहिल, वो उसी मुबतदा के मिसल है जो महजूफ है मुस्तहिल के इस मकूले में। अल मुबसिर लिल हिलाल, वो मुस्तहिल जो चांद को देखने वाला है, जो चांद को देख रहा है, अर्राफी सौतहु, जो अपनी आवाज को ऊंचा कर रहा है, जो अपनी आवाज को ऊंचा करता है, इंदा इबसारी ही चांद को देखते वक्त। मैंने क्या माना बयान किया था मुस्तहिल का, चांद देखने वाला, उसको भी मुस्तहिल कहते हैं, और इसी तरह मुस्तहिल आवाज बुलंद करने वाला, उसको भी मुस्तहिल कहते हैं। तो यह मुस्तहिल का माना है, और इबारत पे नजर करो, अल मुस्तहिल है मौसूफ, और अल मुबसिर लिल हिलाल ये इसकी सिफत अव्वल, और अर राफी सौतहु इंद इबसारिही यह है उसकी सिफत सानी। याद रखो यह सिफत काशिफा है, यह सिफत काशिफा है। कश्फ का माना खोलना, खोलना, तवज्जो है, आप भी पढ़ते हैं बुजुर्गों को, कश्फ होता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, औलिया होते हैं, उनको बाज औकात कश्फ होता है, यानी अल्लाह कोई बात आगे आने वाली वो उनको खोलकर पहले ही दिखा देते हैं। तो कश्फ का माना है खोलना। याद रखो ये जो सिफत आती है, सिफत ये मौसूफ की वजाहत कर देती है, उसकी तौजीह करती है। मसलन मैं कहता हूं जाअनी ज़ैदुनिल आलिमो, मेरे पास वो जैद आया जो आलिम है। इस जैद में दोनों एहतमाल थे कि पता नहीं आलिम है या आलिम नहीं। मैं अल आलिम की सिफत लाकर मैंने वजाहत कर दी, मैंने तौजीह कर दी कि अबू जैद क्या है, आलिम है। तो सिफत क्या करती है, मौसूफ की तौजीह करती है, उसकी वजाहत कर देती है, यानी उसे गैर के एहतमाल को खत्म कर देती है। जैद में एहतमाल था आलिम होने का भी और गैर आलिम होने का भी, तो जब आलिम सिफत आ गई इसने गैर आलिम होने के एहतमाल को खत्म कर दिया। तो मारिफा में सिफत किस लिए आती है, तौजीह के लिए, और नकेरा में सिफत आती है तख्सीस के लिए। गुलामुन मोमिनुन, इस मोमिनुन ने गुलाम की कोई वजाहत नहीं की, हां उसमें तख्सीस पैदा कर दी। पहले गुलाम का लफ्ज हर एक पर बोला जा सकता था, अब यह सिर्फ मोमिन गुलाम पर बोला जा सकता है। तो नकेरा की सिफत आए तो क्या फायदा देती है, तख्सीस का, और मारिफा की सिफत आए तो वो तौजीह का फायदा देती है। क्या माना तौजीह, वजाहत, क्या माना वजाहत, यानी गैर के एहतमाल को खत्म कर देती है। मैंने कहा जाअनी ज़ैदुनी ताजिरु, मेरे पास वो जैद आया जो ताजिर है। देखा ये ताजिर जैद की सिफत है, जैद में दोनों एहतमाल थे, ताजिर होने का भी और ताजिर ना होने का भी। तो अब ताजिर सिफत लाकर मैंने वजाहत कर दी कि जैद ताजिर है, तो गैर ताजिर होने का एहतमाल क्या हुआ, खत्म हो गया। मारिफा की सिफत किस लिए लाई जाती है? तौज़ीह के लिए। और कभी कभार सिफत मौसूफ का माना बयान करने के लिए लाई जाती है, कभी कभार सिफत मौसूफ का माना बयान करने के लिए लाई जाती है, वो तौज़ीह का फायदा नहीं देती, वो मौसूफ का माना खोलकर बयान कर देती है, उसको सिफत काशिफा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफत काशिफा कहते हैं। तो कभी कभार सिफत जो है वो मौसूफ के तौज़ीह के लिए नहीं आती बल्कि उसके माना को खोलकर बयान करती है, उसको सिफत काशिफा कहते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं हाजा जिस्मुन तवीलुन अरीज़ुन अमीकुन, हाजा जिस्मुन तवीलुन अरीज़ुन अमीकुन। जिस्म मौसूफ तवीलुन, तवील का माना लंबा, अरीज़ुन ज़ात के साथ, अरीज़ुन का माना चौड़ा और अमीकुन अमीक का माना गहरा। तो जिस्म मौसूफ है और तवीलुन अरीज़ुन अमीकुन, ये तीन उसकी सिफतें लाई गई भाई। और याद रखो जिस्म उस चीज को कहते हैं जिसकी कोई लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो। एक होता है नुक्ता, आपने मंतिक में पढ़ा होगा नुक्ता भाई, जिसकी न गहराई होती है न चौड़ाई न लंबाई भाई, यानी उसकी तकसीम न गहराई में कर सकते हैं न चौड़ाई में न लंबाई में, क्योंकि उसमें गहराई होती ही नहीं तो गहराई में तकसीम कैसे, लंबाई में उसकी है ही नहीं तो लंबाई में तकसीम कैसे, चौड़ाई उसकी है ही नहीं तो चौड़ाई में तकसीम कैसे। फिर नुक्ते के बाद खत है भाई, दो या ज्यादा नुक्ते आपस में मिलेंगे तो खत बनेगा। देखो अब जब दो नुक्ते मिले तो लंबाई आ गई, लंबाई आ गई। अब ये जो खत है ये सिर्फ लंबाई में तकसीम को कबूल करता है, इसकी गहराई चौड़ाई है ही नहीं तो ये गहराई चौड़ाई में तकसीम को कबूल भी नहीं करता। फिर दो या ज्यादा खत आपस में मिलते हैं तो, दो या ज्यादा खत आपस में मिलते हैं तो फिर सता बनती है, सतहुन भाई सता बनती है। सता वो है जिसकी कुछ लंबाई भी होती है कुछ चौड़ाई भी लेकिन गहराई नहीं होती। तो ये जो सता है ये लंबाई में भी तकसीम को कबूल करती है, चौड़ाई में भी, लेकिन गहराई में तकसीम को कबूल नहीं करती। और फिर दो या ज्यादा सतहें आपस में मिलती हैं तो गहराई भी आ गई, दो सतहें मिल गई तो अब क्या आ गई, गहराई भी, लंबाई और चौड़ाई पहले थी अब गहराई भी आ गई, तो ये जिस्म बन गया। दो या ज्यादा सतहें आपस में मिलेंगी तो जिस्म बनेगा, और ये जिस्म इसकी लंबाई भी होती है गहराई भी और चौड़ाई भी, तो ये तीनों तरफ तकसीम को कबूल करता है। लंबाई में आप इसको तकसीम करना चाहें तकसीम हो जाएगा, गहराई में करना चाहें गहराई में भी हो जाएगा, चौड़ाई में करना चाहें तो चौड़ाई में भी तकसीम हो जाएगा। तो जिस्म कहते ही किसको हैं, जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो। तो अब मैंने आपसे क्या कहा, हाजा जिस्मुन तवीलुन अरीज़ुन अमीकुन, जिस्मुन मौसूफ, तवीलुन सिफत अव्वल, अरीज़ुन सिफत सानी और अमीकुन सिफत सालिस, ये तीन सिफतें हैं। लेकिन इससे कोई नया माना आया भाई जिस्म में? नहीं, जिस्म तो कहते ही उसको है जो तवील भी हो अमीक भी हो आरीज भी हो। तो ये जो तीन सिफतें हैं इनको कहेंगे सिफत काशिफा, यानी ये उसी मौसूफ के माना को खोलकर बयान कर रही हैं कि जिस्म कहते किसको हैं जो तवील भी हो आरीज भी हो अमीक भी हो भाई। तो इसको क्या कहते हैं, सिफत काशिफा। बाज औकात सिफत और कोई नया माना नहीं लाती बल्कि सिर्फ अपने मौसूफ के माना को खोलकर बयान कर देती है, इसको क्या कहते हैं, सिफत काशिफा। कश्फ का क्या माना, खोलना, यानी ये अपने मौसूफ की तफसीर कर रही है, उसका माना खोलकर बयान कर रही है। तो यहां पर भी क्या आया, अल मुस्तहिल मौसूफ आया, और उसकी सिफत क्या आई, अल मुबसिर लिल हिलाल, चांद को देखने वाला, अर राफ़ी सौतहु इंदा इबसारिही, और उसको देखते वक्त आवाज को बुलंद करने वाला, ये सिफत काशिफा है। ये दोनों क्या है, सिफत काशिफा है। ये मुस्तहिल के माना को खोलकर बयान कर रही हैं। मुस्तहिल भी किसे कहते हैं, चांद को देखने वाला, तो क्या कहा, अल मुबसिर लिल हिलाल। और मुस्तहिल किसे कहते हैं, आवाज को बुलंद करने वाला, तो क्या कहा, अर राफ़ी सौतहु इंद इबसारिही, वो जो अपनी आवाज को बुलंद करने वाला है चांद देखते वक्त भाई। तो ये सिफत काशिफा है भाई, बात समझ में आ गई। या बा अल्फाज दीगर यूं कहो कि साहिब जामी मुस्तहिल का माना बयान करना चाहते थे लेकिन कमाल की इबारत लाए, کہ صفت کی صورت میں انہوں نے معنی بیان کر دیا مستحل کا بھائی. تو کہتے ہیں الہلال واللہ ای ہاذا الہلال واللہ. دیکھو ہاذا مبتدا محذوف نکال لیا, اور اس کا حذف جائز تھا یا واجب تھا؟ جائز تھا بھائی. ای ہاذا الہلال واللہ بالقرینۃ الحالیۃ. بھائی یہ ہاذا مبتدا محذوف ہے, اس کو حذف کر دیا گیا. بالقرینۃ الحالیہ کس کی وجہ سے؟ قرینہ حالیہ, کیونکہ قرینہ حالیہ موجود ہے, سارے لوگ چاند ہی کو دیکھ رہے ہیں بھائی. ولیس من باب حذف الخبری, کہتے ہیں یہ حذف خبر کے باب سے نہیں ہے بھائی. یہاں اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا الہلال واللہ, الہلال کو کیا بنایا؟ خبر, خبر, اور اس کے لیے مبتدا حاذا محذوف نکالا. بھائی آپ اس الہلال کو مبتدا بناتے, اس کی خبر محذوف نکال لیتے. الہلال حاذا آپ نے کس کو محذوف مانا؟ مبتدا کو محذوف مانا, اور الہلال کو کیا بنایا؟ خبر. آپ اس الہلال کو مبتدا بناتے اور حاذا خبر کو محذوف نکال لیتے. کہتے ہیں نہیں بھائی, ایسا ہم نہیں کر سکتے, ایسا ہم نہیں کر سکتے. کیا وجہ؟ کیا وجہ یاد رکھو, وجہ سمجھ لو, گہری بات ہے. یہاں وہ جو بولنے والا ہے مستحل جو ہے, وہ نفس ہلال کی خبر دینا چاہتا ہے. کس کی؟ نفس ہلال کی خبر دینا چاہتا ہے. تو جس کی خبر دینا چاہتا ہے, یعنی جو خبر دینا چاہتا ہے, اس کو خبر بنائیں گے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم, زید آپ کا ایک ساتھی ہے, آپ اس کو جانتے ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. اب میں زید کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے, عالم ہے. تو وہ عالم کو میں خبر لے کر آؤں گا بھائی. زید کو تو آپ جانتے ہیں, جس کو آپ جانتے ہیں اس کو مبتدا بنائیں گے, اور جو بات بتلانا ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر. تو یہاں پر بھی مستحیل کیا خبر دینا چاہتا ہے لوگوں کو؟ نفس چاند کی خبر دینا چاہتا ہے, اور وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی ہلال ہی کو طلب کر رہے ہیں. تو جس بات کی خبر دینا ہے اور جس بات کو طلب کیا جا رہا ہے, اس کو خبر ہی کی صورت میں لایا جائے گا, کیونکہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے, اور خبر معلوم نہیں ہوتی. تو جو چیز معلوم نہیں ہے اس کو خبر بنا کر لائیں گے بھائی, اس کو خبر بنائیں گے کہ ہاذا ہلال, یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا. لوگ چاند کی دیکھ رہے ہیں کہ افق پر کوئی چیز ہے جو کیا ہے, چاند ہے. تو وہ ہاذا کے ذریعے اس ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا, یہ ہے چاند, یعنی جس کو تم دیکھ رہے ہو. اور اگر یوں کہا جائے الہلال ہاذا, کیا کہا جائے؟ الہلال ہاذا کہا جائے, پھر تو معنی یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو چاند کا پتا ہے. الہلال کو مبتدا بنایا نا, مبتدا کو تو آپ جانتے ہیں, مبتدا کی تو پہچان ہوتی ہے کہ وہ چاند جس کو آپ جانتے ہیں. لیکن تعین نہیں, مثلا دو تین چیزیں ہیں تعین نہیں کہ ان میں سے کون سا والا ہے چاند. تو آپ کہتے ہیں الہلال ہاذا, چاند یہ والا ہے چاند. تو فرق سمجھ میں آیا؟ تو اگر آپ الہلال ہاذا کہیں گے, پھر تو معنی یہ ہوگا آپ تعین کر کے بتا رہے ہیں. ہلال کا پتا ہے سب کو, ہلال کو دیکھا ہوا ہے, لیکن تعین نہیں ہو رہی کہ یہ والا ہے یا یہ والا ہے. تو آپ کہتے ہیں الہلال ہاذا, چاند یہ ہے بھائی. توجہ ہے؟ پھر تو سارا معنی ہی خراب ہو جائے گا, کیونکہ الہلال کو مبتدا بنایا, اور مبتدا تو وہ ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے, اس پر آگے کوئی حکم پھر لگایا جاتا ہے. تو پھر تو کلام کا معنی یہ بن جائے گا, جتنے لوگ کھڑے ہوئے ان کو چاند معلوم ہے, چاند ان کو نظر آ رہا ہے, لیکن صرف تعین نہیں ہو رہی یہ دو تین چیزوں میں سے کون سا والا چاند ہے بھائی. تو اس وقت پھر کہا جائے گا الہلال ہاذا, چاند یہ والا ہے بھائی. اور جب آپ نفس ہلال کی خبر دینا چاہتے ہیں, لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو جس کی خبر دینا چاہتے ہیں اس کو خبر ہی بنائیں گے. ہاذا الہلال, یہ ہے چاند بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولیس من باب حذف الخبر, اور یہ حذف خبر کے باب سے نہیں ہے. بتقدیر الہلال ہاذا, اس تقدیر کے ساتھ. وليس من باب حذف الخبر بتقدير الهلال هذا, اور یہ حذف خبر کے باب سے نہیں ہے بئی تقدیر کہ الہلال ہاذا کہا جائے. الہلال مبتدا اور ہاذا خبر, اس تقدیر کے ساتھ اس کو حذف خبر کے باب سے بنایا جائے, ایسا نہیں ہے بھائی. لأن مقصود المستحل, اس لیے کیونکہ مستحل جو ہے, یعنی چاند کو دیکھنے والے کا مقصود جو ہے تعین شیء بالاشارتی, وہ ایک شے کو متعین کرنا ہے اشارے کے ذریعے کہ ہاذا یہ والی چیز جو ہے, والحکم علیہ بالہلالیتی, اور اس پر حکم لگانا ہے ہلال ہونے کا, اس پر حکم لگانا ہے ہلال, کہ ایک شے کو متعین کرتا ہے اشارے کے ذریعے کہ ہاذا یہ شے جو ہے, ہاذا الہلال یہ کیا ہے, ہلال ہے, یعنی اس پر ہلال ہونے کا حکم لگانا ہے. اچھا ہلالیت کے اندر یائے مشدد اور گول تا آئی بھائی, تو الہلالیت کے اندر یائے مشدد اور گول تا آئی, اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ یائے مشدد اور گول تا عموماً مصدر بنانے کے لیے لاتے ہیں. تو ہلالیت کا کیا معنی, ہلال ہونا. دیکھو اب ترجمہ سنو, کہتے ہیں ولیس من باب حذف الخبر بتقدیر الہلال ھذا, کہتے ہیں یہ الہلال ھذا کی تقدیر کے ساتھ حذف خبر کے باب سے نہیں ہے, لان مقصود المستحل لتعین شیء بالاشارتی, اس لیے کیونکہ مستحل کا مقصود جو ہے وہ ایک شے کو اشارے کے ذریعے متعین کرنا ہے, والحکم علیہ بالہلالیتی, اور اس پر حکم لگانا ہے ہلال ہونے کا, لیتوجہ الیہ الناظرون, تاکہ دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, وہ یراہ اور وہ بھی اس چاند کو دیکھ لیں, کما یراہ جیسے کہ وہ مستحل اس چاند کو دیکھ رہا ہے, وانما اتا بالقسم جریا علی عادت المستحلین غالبا, وانما اتا بالقسم, اتا کا معنی آنا اور اس کا صلہ با آ گیا, اب یہ متعدی ہو گیا, معنی ہوگا لانا, وانما اتا بالقسم, اور ماتن جو ہے قسم لے کر آئے, جریا علی عادت المستحلین غالبا, تو وہ غالباً مستحلین کی جو عادت ہے اس پر چلتے ہوئے, جرائے جری کا معنی چلنا, تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَتَى بِالْقَسَمِ جَرْيًا عَلَى عَادَةِ الْمُسْتَحِلِّينَ غَالِبًا, کہتے ہیں ماتن قسم لے کر آئے غالباً جو مستحلین کی عادت ہے اس پر چلتے ہوئے, وَلِئَلَّا يُتَوَهَمَا, اور تاکہ کہیں یہ وہم نہ کیا جائے, یہ قسم کیوں لائے, ایک تو مستحلین کی عادت پر چلتے ہوئے کہ وہ عموماً چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں, وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَصْبُ الْحِلَالِ عِنْدَ الْوَقْفِ, اور تاکہ ہلال کے نصب کا وہم نہ کیا جائے, عند الوقفی وقف کے وقت, بھائی کہ اگر وقف کیا جائے گا قسم نہیں لائیں گے پھر تو وقف ہوگا, پھر تو نصب کا بھی احتمال آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا یاد رکھنا ہلال کا لفظ آیا, پہلے تین دن چاند ہلال کہلاتا ہے, پہلے تین دن چاند ہلال کہلاتا ہے, اور اس کے بعد قمر کہلاتا ہے, اس کے بعد مہینے کے اختتام تک قمر کہلاتا ہے, ہاں البتہ چودہویں رات کو پھر وہ بدر کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.